ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। नवरात्रि के काल में कोल्हापुर के महालक्ष्मी के इतने वीडियो हमारे पास आए, श्रृंगार करते हुए हर दिन अलग अलग, यहाँ बैठकर हम लोग महालक्ष्मी जी का श्रृंगार का दर्शन कर रहे हैं वीडियो। जैसे आषाढ़ एकादशी को पंडरपुर के भगवान का श्रृंगार करते हुए पूरा वीडियो, फुल 2.5 आवर्स मुख्यमंत्री के साथ। ये भारत भूमि का भाग्य है। अगर अमेरिका में हम लोग जन्म लेते तो कौन आपको वीडियो भेजता, महालक्ष्मी के श्रृंगार का और पंडरपुर के श्रृंगार का। तो इसलिए भारतवर्ष में जन्म लेना बड़े भाग्य की बात है। उसका रहस्य ऐसा है कि एसी रहेगा लेकिन बिजली नहीं रहेगी तो वो नहीं चलेगा। एसी है, अभी आएगा लाइट तभी चलेगा। सो भौतिक दुनिया में आप कितनी भी व्यवस्था कुछ भी करो, फिर भी एक चीज़ होती है, एक चीज़ नहीं होती है, फिर वो नहीं होती इसलिए भी नहीं होती है। फिर ऐसे तरह से अपना काम अपने को करते रहना है ना। अभी हम लोग कथा के लिए आए तो कथा तो बोलना ही है। तो मैं ये कह रहा था कि महालक्ष्मी जी, मेरे विचार से अगर मैं सही हूँ तो वो जब रुक्मिणी जी द्वारका में नाराज हो गए थे ना, तभी आई थी ना महालक्ष्मी, नहीं वो, हाँ भृगु मुनि ने जब भी भगवान के वक्षस्थल में लत्ता प्रहार किया तो लक्ष्मी को अच्छा नहीं लगा, क्रोध आया उनको, तो वहाँ पर आ गई माँ लक्ष्मी। और जब भी रुक्मिणी को गुस्सा आया तो वो पंडरपुर गई। यस, मिक्सअप नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको उसी के उपलक्ष्य में कहानी बताता हूँ। हाँ देखो, भगवान मतलब वो ऋषि मुनियों में, देव ऋषियों में, मुनियों में बैठकर देवताओं में चर्चा हुआ कि पता करते कौन भगवान है। तो भृगु मुनि को तय किया उन्होंने कि जाओ भाई, हमारे प्रतिनिधि के रूप में तुम एग्जामिनर बन के जाओ। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो उधर भी कुछ लीला हुई, तो समझ में आया कि ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, तो गुस्सा आया। शिव जी को ऐसे आलिंगन देने का आए तो बोले, दूर रहो, भस्म भस्म हम लोग नहीं लगाते, मैं ब्राह्मण हूँ। तो शिव जी को भी गुस्सा आया है ना, इज दैट राइट। तो उनको लगा शिव जी भी भगवान नहीं है। तो विष्णु के पास गए तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा ही, क्या कहते हैं हमारी भाषा में, गुस्सा की किया। सीधा जाके भगवान आराम से लेटे हुए हैं, भगवान की चरणों में लक्ष्मी देवी सेवा कर रही है, इतना सुंदर वातावरण है। देखो भगवान विष्णु का कभी देखा है आपने चित्रपट, शांत सर, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई टेंशन नहीं, ऐसा समुद्र है वो भी शांत है, नाग भी शांत, सब लोग शांत, लक्ष्मी देवी बहुत प्रेम से सेवा कर रही है। ऐसे शांत वातावरण में जाके एक लात मार दिया छाती पर उनके, तो क्या उम्मीद है कि जैसे ब्रह्मा शिव जी को भी गुस्सा आया वैसे ये भी गुस्से से बोलेंगे, क्या मतलब कौन हो आप, क्या समझते हो अपने आप को, कैसे आपकी हिम्मत हो रही है, मैं आपको शाप दे के भस्म कर दूंगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अगर वहाँ पर दुर्वासा मुनि तो क्या होता सोचे आप, दुर्वासा मुनि होते तो क्या होता, पहले तो उनको लात मारने की हिम्मत ही नहीं होती सबसे पहली बात है। लेकिन विष्णु भगवान ऐसे है कि वो उन्होंने लात भी सहन कर ली। लेकिन विष्णु भगवान का जो रिएक्शन था ना वो था अहो आश्चर्यम। एक है कि भाई आपको गुस्सा आया और कुछ नहीं बोले, जब मैं तो विष्णु हूँ कैसे बोलूंगा, अभी शांत रहना अच्छा है नहीं। लेकिन ये जो अनपेक्षित सबसे बड़ा उत्तर उन्होंने दिया, आपके पैर को तो लगा तो नहीं ना, कहीं आपके पैर को दर्द तो नहीं हुआ, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, बोले मेरी छाती जो है ना वो वज्र की बनी हुई है, एटम बॉम्ब भी आएगा ना तो वो फूट जाएगा, लेकिन मेरी छाती को कुछ नहीं होगा, ऐसा छाती है मेरी। और तुम्हारे ब्राह्मण लोगों के पैर बहुत कोमल होते हैं, क्षत्रियों के बहुत हाथ और बहुत ऐसे कठोर होते हैं शस्त्र वस्त्र पकड़ के, ब्राह्मणों के कोमल होते हैं। तो आपने लत्ता पार किया, आपके पैर को शायद चोट पहुंची होगी। ये जो व्यवहार है ना भगवान का, ये बहुत अद्भुत है। ऐसे भगवान हमेशा अद्भुत काम करते हैं। लेकिन जैसे होता ना कि भगवान अपने ऊपर अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन भगवान का भक्त भगवान के ऊपर अपराध नहीं सहन करता है। और भगवान भी खुद पर अपराध सहन कर लेंगे, लेकिन भक्त पर क्या वो अपराध नहीं सहन करेंगे, है ना? वैसे वर्षा है, मतलब दोनों को अपनी तरफ से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे को अपराध किया, भक्त के लिए भगवान का अपराध किया तो भक्तों को गुस्सा आएगा, और भक्त के लिए अपराध किया तो भगवान नहीं छोड़ेंगे आपको। वही भगवान जो बोल रहे हैं ना, आपको पैर को कष्ट तो नहीं हुआ, अगर भक्त का कुछ करेंगे तो वो छोड़ेंगे नहीं आपको। ऐसा भगवान का नाम मराठी में ना टोकाचा स्वभाव, म्हणजे एका ठिकाणी एवढे मृदु, एवढे कोमल, एवढे एवढे करुणामय की विचारूच नका, आणि एका ठिकाणी असह्य, त्यांना जरा पण सहन नाही होत भक्तांच्या विरुद्ध काय अपराध केला तर। तो लक्ष्मी देवी को नहीं सहन हुआ, अरे क्या हिम्मत है आपकी मेरे सामने, मेरे नाथ के छाती पर लत्ता प्रहार कर रहे हैं आप। मैंने कहा मैं शाप देती हूँ आपको कि आप ब्राह्मण लोग कभी भी मेरी कृपा प्राप्त नहीं करोगे। कृपा मतलब क्या, लक्ष्मी की मतलब क्या, धन संपत्ति, फुलूस, फुलूस अरबी में बोलते हैं फुलूस, माफी फुलूस, मतलब पैसा नहीं मिलेगा आपको कुछ। आप सब लोग हमेशा दरिद्र रहेंगे और भिक्षा मांगते ही रहेंगे, माला माल नहीं होंगे। इसलिए आम तौर पर सभी ब्राह्मण जो है ना बेचारे गरीब रहते हैं। अपन बोलते ना गरीब बेचारा ब्राह्मण। लेकिन इसमें हर एक रूल में एक होता है अपवाद, है ना? तो ऐसी ही एक और घटना हुई। अभी एक घटना हो गई, और आपने जैसे कहा कि वहाँ पर माँ लक्ष्मी जाके रूठ गई और वहाँ पर आके बैठ गई कोल्हापुर में। तो और एक घटना प्रसंग ऐसा है, सिमिलर नहीं है लेकिन अलग प्रसंग है। अब भाग्य लक्ष्मियों की भाग्य लक्ष्मी कौन है? रुक्मिणी देवी, है ना? वो रुक्मिणी देवी अभी 13 साल की कन्या है, और उसका विवाह उसके बड़े भाई के इच्छा के अनुसार उसका मित्र शिशुपाल के साथ किया जा रहा है, अपने पिताजी की इच्छा को लांग कर। पिताजी की इच्छा नहीं थी, भीष्मक की इच्छा नहीं थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, छोटे समय पे पिताजी का राज्य होता है, बट्टा बेटा बड़ा हो गया तो पिताजी ठंडा हो जाता है और पुत्र का राज्य होता है। जैसे दुर्योधन कैसे हावी हो गया धृतराष्ट्र के ऊपर, वैसे कंस हावी हो गया उग्रसेन के ऊपर, वैसे कुछ समय के बाद रुक्मी हावी हो गए, बहुत पराक्रमी था ना वो, तो भीष्मक बूढ़े हो गए तो शांत हो गए। तो उन्होंने तय किया, और यहाँ पर रुक्मिणी तो बचपन से भगवान की कृष्ण की कथा सुनते सुनते, नारद मुनि से विशेष करके सुनते सुनते सुनते, सुनने से ही प्रेम हो गया है, और इतना प्रेम हो गया कि इसी से विवाह करना है। क्या श्रवण की महिमा है, देखो आप भगवान के विषय में श्रवण की कितनी महिमा है। देखो हृदयंतस्त वो अभद्राणी विदु नदी सुरुस्ताम भक्तिर्भवती नैष्ट की, ऐसी भगवान की कथा है। जप करने के समय हम भगवान को खींचने का प्रयास करते हैं, अपनी कथा से सुनते हैं ना वो खुद ही आके बैठ जाते हृदय में। ये सबको पता होना चाहिए, जब हमारा प्रयास है उनको बुलाने का और कथा उनकी इच्छा है आने की, और वर्ड क्या यूज किया है, विधु नोती, मतलब आके बैठ जाते हैं और साफ सफाई का काम शुरू कर देते हैं यहां पर बैठे हृदय में, इमेजिन। तो ये रुक्मिणी ने सुन सुनकर ही भगवान को बिना देखे उन पर प्रेम प्राप्त किया था, इतना निश्चय था कि मुझे इनसे ही विवाह करना है, और ये यहां पर शादी की तैयारी जोरदार जोरदार चल रही थी। शिशुपाल दूल्हा बनने की तैयारी कर रहा था, रुक्मिणी को सजाया जा रहा था, और ये बीच में एक ब्राह्मण को अभी डेरिंग की थी। देखो प्रेम में कैसा होता ना, प्रेमा तुराणाम न भयम न लज्जा, मैंने थोड़ा ऑल्टर कर दिया इसको। हाँ, जिसको प्रेम होता है ना वो उसको भय नहीं होता है कभी, और लज्जा भी नहीं होती है। शकुंतला भी ऐसे ही प्रेमवश जंगल में भाग गई थी, उसको बाद में पूछा गया आपको डर नहीं लगा रात को, रात के समय कोई बाघ आएगा, सिंह आएगा, शेर आएगा, आपको डर नहीं लगा? नहीं, बोला मुझे पता ही नहीं था क्या है मैं तो, और बीच रात में अंधेरे जंगल में भागी ऐसे दुष्यंत को मिलने के लिए। उस समय कुछ पता नहीं था उसको, बाद में लगा अरे बाप रे कैसे भागी मैं, क्यों? कि जब आदमी प्रेम से वश होता है ना, तो वो हर प्रकार का कोमल आदमी डेरिंगबाज काम कर सकता है। अब ये राजकुमारी है, छोटी सी राजकुमारी है, और वो शालीन कुलीन कुल की है, ऐसा नहीं कि कोई ऐरी गैरी लड़की है, राजकुमारी है, विदर्भ की भीष्मक कन्या है वो, फिर भी जो उसकी मर्यादा में नहीं बैठता वो करती है। वो ब्राह्मण को बुलाती है और एक क्या कहते हैं ना, धैर्यपूर्वक मतलब डेयरिंग से एक खत लिखती है, लव लेटर। ऐसा उधर कल्चर नहीं था कि लव लेटर लिख के, शादी किसी से हो रही है, ऑलरेडी तय हो गया, एंगेजमेंट हो गया, सब हो गया है, और किसी को लव लेटर भेज रहे हैं, ऐसा कल्चर नहीं है अपना वैष्णव संस्कृति का। फिर भी वो भगवान के विषय में संबंधित था, इसलिए उसने डेयरिंग की और एक सुंदर खत लिखा, ब्राह्मण को बुलाया, विश्वासु ब्राह्मण को, और वो खत दिया, बोले जाओ और उनको पहुंचा दो। और ऐसा उनको अल्टीमेटम दिया कि मैं थोड़ी सी क्या कहते हैं उसको, बेशरम होकर ये सब लिख रही हूँ क्योंकि समय ही ऐसा है, अगर मैं मेरे दिल की बात अभी नहीं बोलूँगी और मन में रखूँगी तो अनर्थ हो जाएगा, फिर मेरे जीवन के लिए कोई अर्थ बचेगा नहीं, जीना जीने के लिए कोई अर्थ नहीं बचेगा, तो वो निरर्थक जीवन होने के पहले मुझे बोल्ड होना चाहिए और बोलना चाहिए क्या मुझे मन में क्या है, तो पूरा लिख देती है। वो कहती है कि मुझे ऐसा लिखना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बेशरम होकर लिख रही हूँ कि मुझे ऐसे विवाह करना है, तो मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि अगर इससे समय के पहले नहीं आएंगे ना तो मेरा विवाह हो जाएगा, इसलिए आपको तुरंत आना है, सब कुछ छोड़ के, ड्रॉप एवरीथिंग एंड कम। उसको ये भी लग रहा है कि मैं इतनी योग्य भी नहीं हूँ कि आपको ऐसे बता सकूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे कम से कम इतना तो समाधान मिलेगा कि मैंने दिल का बात बताया, आपने सुना नहीं सुना, अमल नहीं किया, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मुझे इतना समाधान रहेगा कि मी बोलले सांगितलं माझ्या मनातलं काय ते, उद्या असं पश्चाताप नको व्हायला की मी बोललेच नाही, मग त्यांना कळलंच कसं असणार, सो मैंने बोल दिया। वो भी बेचारा ब्राह्मण रातोरात भाग गया द्वारका, और अभी नागपूर द्वारका किधर है प्रभुजी, बहुत दूर है, आज भी दूर है, उस टाइम में तो ऐसा फ्लाइट वाइट नहीं था, तो वो कैसे गए होंगे, शायद वाहन से गए होंगे निश्चित रूप से, घोड़े गाड़ी में से गए होंगे निश्चित, नहीं तो फिर वो ब्राह्मण पैदल कैसे जा सकता है, बैलगाड़ी इम्पॉसिबल है। तो कृष्ण को मैसेज दिया और कृष्ण कैसे ना तत्क्षण निकले वहां से, तत्क्षण निकले, बलराम को भी नहीं बताया उन्होंने, इस तरह से निकल गए। बलराम को लगा कुछ गड़बड़ है, मुझे जाना चाहिए उनके पीछे पीछे, ऐसे निकल गए मतलब बिना कुछ बोले, मतलब कुछ तो भी इमरजेंसी है, और पता चला कि वो विदर्भ की ओर निकले, तो ये भी सेना लेकर निकले, मतलब कुछ देखो क्षत्रियों का कैसा होता है ना, कभी भी युद्ध हो सकता है, शस्त्र चल सकता है, कभी भी किसका वध कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए वध करना कोई बड़ी बात नहीं, तो वो हमेशा रेडी रहते हैं। तो भाई किसी काम के लिए गए तो भी सेना लेकर जाते हैं, भाई बीच में कुछ युद्ध हुआ तो भी सेना है, मैं भी हूँ, शस्त्र सज्जा होकर जाते हैं। तो कृष्ण भगवान ना ऐसे कहते हैं, एक रात के अंदर शाम को निकले और पहाटे पोचले, विद इन नो टाइम ही रीच्ड, और वो एक्सप्रेस जर्नी था उनका, ऐसा आराम से घूमते घूमते हवा खाते नहीं आए, वो वन पॉइंटेड फिक्स्चर से आए, रुक्मिणी बुला रही है और समय की पाबंदी भी है, और आए और आने के बाद कुछ खबर नहीं दिया रुक्मिणी को, यू अंडरस्टैंड, रुक्मिणी देख रही सुबह हो गई, सुबह हो गई, अभी अंबिका पूजा का समय होने वाला है, मैंने अंबिका पूजन के समय पर उनको वहाँ पर बुलाया है, वहीं से एक ही मौका है भगा भगा, वो खुद बता रही है कि मुझे भगा के ले जाओ और कोई चारा नहीं है, अमुक अमुक जाओ के मैं आऊँगी और मुझे आप भगा के ले जाओ। ये प्रेमी दिल का बोल्डनेस है, मतलब इतना धैर्य है उसको, हिम्मत है उसकी, करेज है उसका, साहस, साहसी हृदय। हाँ, लेकिन भगवान आते हैं रात को, अर्ली मॉर्निंग आते हैं, विश्राम करते हैं, उनका स्वागत होता है, उनको एक एरिया भी देते हैं कक्ष में रहने के लिए, और ये वेट कर रही है, अभी तक कोई जॉब नहीं आया, अभी तक कोई जॉब नहीं आया, अभी तक कोई जॉब नहीं आया, मतलब कम से कम मैंने इतना उत्कंठापूर्वक लेटर लिखा है तो आप कम से कम खबर तो भेजेंगे ना कि भाई मैं आ गया हूँ, कम से कम रिलैक्स। लेकिन भगवान भी हमारे बहुत चतुर है, भगवान कैसे हैं, थोड़ा और खींचते हैं हमेशा, हाँ, संयमाची दोरी थोड़े आणखीन खेचतात ते प्रत्येक वेळी, त्यांना खूप आनंद होतो की लोकांचं प्रेमाबद्दल कोणी असं खूप असा उत्कंठापूर्वक प्रेम व्यक्त करायचा प्रयत्न करा, त्यांना खूप आनंद होतो, म्हणून ते आणखीन ताणून आणखीन जरासा आनंद करायचा प्रयत्न करतात। सो अभी वो निकली अंबिका पूजा जाने के लिए, और देखो रुक्मिणी इतनी सुंदर थी 13 वर्ष की, उसका अभी मैं वर्णन यहाँ नहीं कर सकता, सुखदेव जी ने किया है भागवत में, इतना एक एक अंग का वर्णन किया है सुखदेव, मतलब सुन के भी आप पागल हो जाओगे, इतना सौंदर्य था उसका, 13 वर्ष की केवल उम्र थी उसकी, प्राइम यूथ, और दुनिया भर के राजकुमार वहाँ पर आए थे। स्वयंवर तो था नहीं कि मैं जीत जाऊँ तो मुझे मिलेगा, ऐसा नहीं, लेकिन वो देखने को आए थे, कम से कम भाई एक बार देखने तो मिलेगा, एक बार नज़र भर के देख तो लूँ, इसलिए राजकुमार आए थे बड़े बड़े। और शिशुपाल के सामने और रुक्मिणी के सामने कौन हिम्मत करेगा कि भाई इसको क्यों दे रहे हो, मुझे दे दो, मैं उसके योग्य हूँ, ऐसा कहने की हिम्मत भी नहीं है। रुक्मिणी बहुत पावरफुल था और शिशुपाल भी बहुत पावरफुल था, ऐसा नहीं कि वो कमज़ोर था। तो अभी तय हुआ कि अभी ये जा रही है अंबिका मंदिर में, तो ये राजकुमार ने क्या होगा, क्या होगा, अपना घोड़ा लिया और रोड के दोनों तरफ आके बुकिंग करके खड़े हो गए, अभी लास्ट नज़र देख लूँ उसको, यहाँ से जाने वाली है वो, तो इधर उधर पूरा पैक, वो जगन्नाथपुर में कैसा होता है रथ यात्रा में, हर छप्पर के हर एक इंच पैक, हर जगह पे खिड़ची टेबल कुछ ना कुछ किला, वो किले पर भी आदमी खड़ा है, ऐसा भीड़ होती है। वैसे दुतर्फा मार्ग पर सारे राजकुमार जो है ना वो भीड़ करके खड़े हैं केवल उसको देखने के लिए। और देखो उसको सौंदर्य का एक प्रमाण देता हूँ आपको, जब वो जा रहे थे ना ऐसे, यहाँ से हम आ रही है, यहाँ अंबिका का मंदिर है, ऐसे जा रही है, तो लोग घोड़े पर उल्टे होकर बेहोश होकर गिर रहे थे, काम वासना से व्याकुल होकर उसका सौंदर्य देखकर बेहोश होकर गिर रहे थे। और वैसे वो गई और अर्धे लोग कैसे गिरते 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 ऐसे रह गए, मतलब क्या क्या कहें आपको भी। हमारा मुझे भी एक बार गुरु महाराज ने बताया था कि अगर आज की अवस्था में, आज कैसे हमारी अवस्था है, बहुत काम वासना है, बहुत सारी धन की लालसा है, बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर है, समझो यहाँ से उठा के सीधा स्वर्ग में रख दिया हमको, समझो, तो महाराज ने कहा कि हम सब लोग तुरंत मर जाएंगे, क्योंकि तो वो अप्सरा को देखेंगे ना तो केवल मृत्यु हो जाएगी, इतना काम वासना बढ़केगी हमारे अंदर उनको देखकर, सौंदर्य देखकर, कि आप वहाँ जीवित ही नहीं हो पाएंगे, रह पाएंगे। दिस इज व्हाट हिज वर्ड्स आर। तो हमको अंदाजा लगा सकता है कि हमारी जो दृष्टि है सौंदर्य की वो कितनी हीन है और वहाँ क्या सौंदर्य है। और वो भी जो अप्सरा देवता जो है वो वैकुंठवासिनी स्त्रियों के सामने घोड़ी जैसे दिखती है, ऐसा बताया। दिस इज द स्टेटमेंट। यहाँ की सुंदरता, सुंदरता से जो सुंदरता पुरुष या स्त्री हो वो स्वर्ग के सामने घोड़ा और घोड़ी है। और वहाँ की जो बेस्ट है उर्वशी मेनका जो भी कुछ बताओ आप, उसके ऊपर देवताओं की पत्नियाँ जो हैं, हर एक की पत्नियाँ बहुत सुंदर है, वो वैकुंठ वासिनी वासिनी आदमी और पुरुष, औरत और आदमी के सामने घोड़ा जैसे हैं। और वो लोग गौलोक की गोपियों के और गोपालों के सामने घोड़ा और घोड़ी जैसे हैं। तो सौंदर्य की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो ऐसा सौंदर्य रुक्मिणी का देखकर सब बेहोश हो रहे थे। और वो पूजा करके अंदर गई और इसमें एक बहुत फनी चीज़ हो गई, वो पूजा में ना कुछ मंत्र थे और उस मंत्र में अपने होने वाले पति का नाम लेके एक मंत्र बोलना था, और उसकी माँ भी साथ में खड़ी है और सखियाँ भी खड़ी हैं, बहनें भी खड़ी हैं, कजिन्स भी खड़े हैं, सब लोग खड़े, पूरा एंटराज है, और देवी सामने खड़ी है और पुरोहित उनको एक मंत्र बुला रहे हैं। तो एक मंत्र में हम आप कैसे बोलते हैं, पिता का नाम, माता का नाम, ऐसा बोलते हैं ना बीच में, तो वो मंत्र भटजी बोल रहे हैं लेकिन आप बीच में पिता का नाम बोल लेते हैं, तो वो आगे मंत्र बोलना चालू करते हैं। हमारे श्राद्धवाद में ऐसे ही होता है ना, वो पुत्री पौत्री शर्मणाम, पुत्री शर्मणाम होता है ना वो शादी में, वैसे ही। तो ये जब आया ना पति का नाम, होने वाले पति का नाम लेने का, तो शिशुपाल का लेने के बदले में इसे कृष्ण का नाम ले लिया सबके सामने। माता इतनी क्रोधित हो गई, क्या आपको शर्म नहीं आती क्या, आपका विवाह किसके साथ हो रहा है और किसी और आदमी का नाम ले रहे हो आप। लेकिन वो बड़े भक्ति भाव से श्रद्धा से उसने कृष्ण का नाम लेकर वो मंत्र बोला। तब तक किसी को आइडिया नहीं किया ऐसा क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है ऐसा। और वो सब करके माता बोलेगी भी घर जाके डांटती हूँ उसको, ऐसा क्यों करे तुमने सबके सामने हमारी इबरत का तुमने ऐसा कचरा कर दिया, नाक काट दी हमारी पूरी, ठीक है बाद में देखेंगे। सब लोग अभी उतर के नीचे आ रहे हैं, उतर के नीचे आएंगे, आते ही उधर कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। कहाँ से आए उनको ही पता, रथ लेकर आए और जैसे उसने लिखा था वैसे ही हाथ पकड़ के उसको रथ पे बिठाया और लेके भाग गए। और भगवान भी इतने होशियार, भगवान ने उसके हाथ में ही लगाम दे दिया अपने रथ का, मतलब मैंने भगा के ले जाओ, उसने बताया भगा के ले जाओ। तो लोग कहेंगे मैं भगा के ले गया, ये उसी का इच्छा था। जैसे अर्जुन का सुभद्रा का भी ऐसा ही हुआ था, भगवान ने कहा था देखो जब अर्जुन को लेके जाएगा ना, अर्जुन को रथ चलाने को मत देना, तुम रथ चलाना, उसी बात पर मैं मेरे दाऊ जी को डिफीट करूंगा। इस तरह से भगवान ने उसको उठाया और सीधे वहीं के वहीं यू टर्न मार के द्वारका की ओर। अब लोगों को होश आने को वो टाइम लगा, जो उल्टे गिरे थे ना घोड़े पर, उनको रियलिटी क्या है समझने में टाइम लगा उनको। लेकिन वो किसी ने बोला अरे तू क्या गिर रहा है, उसको देखकर वो देख ले गया उसको, वो गवड़ी तला घेऊन गेला गवड़ी, उसकी क्या योग्यता है गाय चराने वाले की। तो सब लोग फिर ऐसे काम वासना से हटकर फिर द्वेष में आ गए और सबने भगवान के साथ युद्ध शुरू किया। और भगवान ने ऐसा लिखा है शास्त्र में, इतना सुंदर वाक्य मुझे वो पढ़ के बहुत मजा आता है हमेशा, कैसे जैसे क्या कोल्यांच्या झुंडी मधुन एखादा वाघ जसा हरणीला दिमाखाने घेऊन जातो, तसं भगवंतांनी या सगळ्या कोल्ह्यांच्या मधून रुक्मिणीला दिमाखाने घेऊन गेले। सो नाईस यू नो, इन द मिडल ऑफ ऑल जॅकल्स द ग्रेट हिरो श्रीकृष्णा लिफ्टेड रुक्मिणी एज अ डियर, व्हेरी ब्युटिफुल डियर। फिर सब युद्ध हुआ तो कहते हैं और भी एक सुंदर वाक्य लिखा है कि लीलया भगवान ने सबको हरा दिया खेल खेल में। लीलया का मतलब क्या होता है, लीला का मतलब क्या है, लीला में कोई कष्ट नहीं होता है, वो कोई लीला करता है ना, हम लोग सब मेहनत करते हैं, हम लोग लीला नहीं करते, हम सब लोग कष्ट करते हैं, भगवान लीला करते हैं। भगवान को लीला में कोई कष्ट नहीं होता है, तो आनंद से प्रेम से करते हैं, बहुत मजा मजेदार मजा लेते लेते करते हैं। वैसे मजा लेते लेते उन्होंने सबको परास्त कर दिया और फिर चले गए। तब तक खबर पहुंच गई किधर, उसके मेकअप रूम में शिशुपाल के, अरे तुम्हारी दुल्हन को ले गया वो। वो खबर पहुंच गई शिशु रुक्मी के पास, अरे तुम्हारी बहन को ले गया वो, मेहमान बन के आया था सुबह सुबह, दोपहर को ले गया उसको। तो शिशुपाल वहां खड़ा हो गया, अभी जाता हूं मैं युद्ध करने के लिए। तो रुक्मी कहता है अरे दोस्त कंटिन्यू योर मेकअप, आपका मेकअप जारी रखो, मैं किस लिए हूं, आप चिंता मत करो, और मैं वादा भी करता हूं आपको, ये क्षत्रियों का यही प्रॉब्लम है, जहां भाई जाए वहां पर अपना एक एक प्रतिज्ञा ठोक ही देते हैं बिना मतलब के। अर्जुन ने भी ऐसा बहुत सारा प्रसिद्ध प्रतिज्ञा ठोक के रखा था, भगवान ने बोला तुम लोगों को क्या काम नहीं क्या, कभी उठो तो प्रतिज्ञा ठोकते रहते आप लोग, क्या जरूरत थी आपको ऐसा प्रतिज्ञा करने की। हाँ ऐसा उल्टा ही, जयद्रथ ने मेरे बेटे को रोका और चक्रव्यूह के अंदर मार डाला, उधर के उधर ही बोल डाला कि मैं भी इसके सूर्यास्त के पहले कल नहीं मारूंगा तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। अरे क्यों मैं मारूंगा ऐसा बोलना, अग्नि में प्रवेश करने की क्या जरूरत है, आगे का क्लॉज अवॉइड करते ना तुम, खुद को उनको विजय का मार्ग एकदम सुकर करके दे रहे। तो ऐसे ही रुक्मी को भी बहुत उत्साह था, क्या है ना दोस्त है ना, अभी दोस्त की शादी हो रही है, दोस्त की शादी मेरे बहन के साथ हो रही है, इतना सब अच्छा आयोजन किया हुआ है, तो अभी वो बेचारा परेशान हो गया है कि कोई उठा के ले गया मेरे दुल्हन को, अभी इमेजिन ना। ऐसा आज के दुनिया में कभी होता नहीं है ना, जनरली पिक्चर में होता है हमेशा, लेकिन तो उसको हौसला बढ़ाने के लिए तू चिंता मत कर, कंटिन्यू जो कर रहे हो करते रहो, मैं जाके उसको देखता हूँ और आपको विवाह में श्री कृष्ण का शीश भेंट में लेकर आता हूँ। कितनी बड़ी टॉल क्लेम है ना, ऊपर से क्या बोलता है, अगर ये मैं नहीं कर पाया तो मैं विदर्भ में प्रवेश नहीं करूंगा, दूसरा और एक प्रतिज्ञा, खुद को गोते में डालने का ही काम कर रहे हैं। तो वो गया, तब तक तो कृष्ण थोड़े आगे आगे सबको परास्त करके आगे जा चुके थे, ये गया सावधान मैं अभी तक हूं मेरा सामना करो, तो भगवान ने यू टर्न लिया और उसका ऐसा युद्ध किया ना, क्या कहें आपको, उसको ब्लॉक कर दिया सब जगह से। आपने कभी महाभारत में देखा है ऐसा, इश, 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 ऐसा करके ब्लॉक सब जगह बाण ही बाण, ऐसे ब्लॉक कर दिया उसको। और फिर भगवान ऐसे उतरे रथ से और उसका शीश काटने वाले थे, उतने में बलराम जी पहुंच गए, मतलब वो जब निकले जब भी निकले और ऐसे भी स्पीड में आए, ये सब होने के बाद में जब भी भगवान आधे रास्ते पे है युद्ध करके हो चुका है तब पहुंचे। अभी आप सोचिए रुक्मिणी का अभी अभी विवाह होने वाला था, वो तो भगवान ने ऐन मौके पे आपके उसको बचाया और भगवान ले जा रहे हैं, लेकिन भाई पर प्रेम तो है ना उसका, ऐसा नहीं कि भाई कोई राक्षस है और मरना चाहिए, ऐसा तो मन में नहीं था, प्रेम तो है उसका। और अभी क्या देख रही है, मेरे प्रिय होने वाले पति मतलब जिनको मैंने वर लिया है वो और मेरे प्रिय भैया, इनके बाद में युद्ध हो रहा है, और ये भी ऐसा युद्ध हो रहा है कि मेरे होने वाले पति मेरे भाई को भी खात्मा करने वाले हैं। तो वो बड़ा संकोच में थी, आनंद में भी थी, उसका उसकी भावना व्यक्त करना बहुत मुश्किल है, बहुत कश्मकश में थी वो, एक तरह से मनपसंद घटना हो रही है, एक तरफ से दुखी घटना हो रही है, और क्या करो, भाई की भी मृत्यु चाहती नहीं है और इनका भी ऐसा अपमान नहीं होना चाहिए, जो भी है मिक्स फीलिंग्स। तो वो बलराम जी आके देखते हैं कश्मकश, हाँ, रुक्मिणी के चेहरे पर। तो अभी कैसा होता है ना, देखो हमारे भी, हमने भी बचपन में अनुभव किया, जैसे हमारे बड़े भाई की शादी हो गई ना, तो मैं सबसे छोटा था, तो जब भाभी आई ना तो मैंने भी बहुत कोशिश की कि मुझे भी वो नोट करे, मतलब मैं भी हूँ घर में, ऐसे कुछ ना कुछ बात करके ऐसा कुछ देखे वगैरह, यू नो रिलेशनशिप बना के कि भाभी आई एम योर यंगर ब्रदर इन लॉ, देवर आपका हूँ मैं। तो ये बड़े भैया है ना, वो तो जेठ हैं, देवर भी नहीं है, तो वो अपना रोब जमाने के लिए क्या करते हैं, आके तुरंत बोलते हैं अरे कृष्ण तुझे शर्म नहीं आती, भाभी को कितना कष्ट हो रहा है देखो, तुम उसके सामने उसको मारने जा रहे हो, उसको क्या लगता है, सोचा क्या तुमने? इसका दो कारण है, एक कारण है तो रियलिटी, दूसरा कारण है कि भाभी को लगे बड़ा भाई कितना पावरफुल है और कितना सोचता है, जो ये नहीं सोच रहे हैं वो सोच रहा है पते की बात तो भगवान को ठीक लगा, ठीक है भाई अच्छा है, मेरा वैसे भी तो मेरा साला ही है ना वो, वैसे भी कुछ भी बोलो आप लेकिन साला ही है, जब मैं विवाह करूंगा तो साला बन जाएगा, तो फैमिली मेंबर बन जाएगा, तो अभी तो क्षत्रिय में चैलेंज किया है तो उसको मारना भी चाहिए मारना भी नहीं चाहिए, तो क्या करना चाहिए, मारना भी है और मारना भी नहीं है, ऐसा प्रसंग उस पर भी आया था, अश्वत्थामा के ऊपर भी आया था मारना भी है और मारना नहीं भी है, भगवान ने बोला इसको मारो लेकिन मारो मत तो भगवान ने क्या किया, अमल में अपना जो तलवार लिया ना तो मारने के लिए लिया था, उससे आधी मूछ और बाल ऐसे नोच दिए कि ऐसे, आपने देखा कभी वो चावल का आवणी देखा, कभी चावल का आवणी देखा, आवणी एक असते पेरणी, मग ते तिकडून कसे काढतात आणि अलग जगह पे लगाते, यहाँ के निकालते और इकट्ठा करके दूसरी जगह लगाते, तो आपने कोई सीन देखा है वो, जब आप लगाते हो तो ऐसा भरा हुआ नहीं रहता है, इधर गैप इधर गैप इधर गैप, इधर चावल इधर चावल, ऐसा ऐसा फ्रेश कंडीशन कैसा रहता है डालने के बाद में, ऐसा बिखरा हुआ रहता है वो, जब फिर बाद में फूलता है तो पूरा खेत भरा हुआ दिखता है, वैसा उसका सर का अवस्था कर दिया उन्होंने, थोड़े इधर बाल थोड़े इधर बाल थोड़े इधर बाल थोड़े सामने बाल थोड़े ऐसे, वेरी फनी, और वो मूछ और दाढ़ी आधी काट दी उसकी, पूरा विद्रूप कर दिया उसको, मन में सोच रहा है रुक्मी अरे मार दो तो अच्छा है लेकिन इतना अपमानित करके जीवित छोड़ना तो मृत्यु से भी बढ़कर है, पर प्रॉब्लम क्या हुआ, अभी भगवान ने मारा तो नहीं, विद्रूप कर दिया, मतलब एक तरह से बड़ा 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 अपमान कर दिया, ऊपर से वो प्रॉमिस किया था ना इसका शीश मैं मैरिज में गिफ्ट लेके आऊंगा, वो भी नहीं हुआ, फिर याद आया कि उसके बाद में मैंने क्या बोला कि विदर्भ लौट के नहीं आऊंगा, तो बोलते हैं जहां पर काटा ना सब कुछ बाल बाल उधर ही बस गया, वो उधर ही राज्य बसा दिया उसने, ही इस्टैब्लिश हिज किंगडम देयर ओनली, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन वो भी एक अच्छी जगह है, हाँ भोज काटा शायद, क्योंकि जहां पर उसने अपना राज्य बसाया वही उसका मृत्यु का स्थान भी बना बाद में क्योंकि उधर बलराम जी ने आके उसको मारा बाद में, बताया ना आपको। तो ये सब मैं कथा क्यों बताई, एक ही बात बताने को बताई कि ये सब होके रुक्मिणी हरण हुआ और फिर बाद में रुक्मिणी का भगवान ने विवाह किया, बराबर है, तो वो रुक्मिणी ने उस ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा फले फूले रहोगी, और वो कौन से ब्राह्मण है, पालीवाल ब्राह्मण है, वो पालीवाल जाति के ब्राह्मण है, और पालीवाल जाति के ब्राह्मण जो है हमेशा बहुत सधन रहते हैं, हमेशा वेरी रिच फिल्दी रिच, क्योंकि एक तो लक्ष्मी ने भृगु वंश को शाप दिया और पालीवाल वंश को रुक्मिणी ने आशीर्वाद दिया और एक मंत्र दिया जो हम लोग यहाँ पर उच्चारण नहीं कर सकते, गुप्त मंत्र है वो, गोपाल मंत्र जो हमारे गायत्री में आता है, वो मंत्र जो है वो उन्होंने रुक्मिणी ने पालीवाल ब्राह्मण को दिया और कहा इस मंत्र को जपो कभी धन का अभाव नहीं होगा। आप लोग बोलेंगे प्रभु जी बताओ ना हमको भी बताओ, तो उसके लिए क्या है ना, 16 माला जप, हाँ कम से कम 3 साल, 4 नियम का पालन कम से कम 3 साल, काउंसलर के अंडर कम से कम 6 महीना या 1 साल, और उसके बाद फर्स्ट दीक्षा, और उसके बाद में भक्ति शास्त्री, और उसके बाद में 5 साल तक कम से कम काउंसलर को लगना चाहिए कि सही चल रहा है इसका काम, गड़बड़ नहीं चल रहा है। तो भक्ति शास्त्री होने के बाद में कोल्हापुर में भी DT अगर आने वाली है तो DT डिपार्टमेंट ने रिकमेंड करना चाहिए, आपको ब्राह्मण चाहिए, ये आदमी अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, तो अब आपको वो ब्राह्मण दीक्षा मिलेगी, और वो फिर ब्राह्मण दीक्षा में आपको बहुत सारे गुप्त मंत्र मिलेंगे, उसमें वो मंत्र छुपा हुआ है इसलिए वो नहीं बोल नहीं सकता आपको, क्योंकि मैं बोलूँगा तो मेरे तरफ से अपराध हो जाएगा। और उस मंत्र की और एक कहानी बताता हूँ, ऐसे ही कहानी बनना अच्छा रहता है, प्लान करके कहानी बनाने में बहुत तरह कष्ट होता है दिमाग को भी, लेकिन ऐसे ही कथा बता दी जाएंगे तो बहुत आनंद आता है। क्या कहते हैं उसको, लीलया। तो ये मंत्र की और एक कहानी है, अब ये आपको बता देना, समझ गया ना, पालीवाल ब्राह्मण रुक्मिणी द्वारा उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वो कभी भी गरीब नहीं रहते हैं, हमको भी वो मंत्र प्राप्त हो गया इसलिए हम भी कुछ कुछ अच्छे रहते हैं, मतलब ऐसा गरीब नहीं। तो एक दिन गोकुल में हमारे जो नंद बाबा हैं वो रोज सुबह नदी में स्नान करते हैं, जमुना जी में, गोकुल में जमुना जी है ना, स्नान करते हैं, और उनका ऐसा, उनका स्वभाव चरित्र उनका ऐसा है कि साधुगण में उनका स्नान करते हैं हर रोज, उनका टाइम साधुओं का टाइम एक ही टाइम है, तो रोज वो साथ में करते हैं। एक दिन नंद बाबा को लेट हो गया, होता है ना कभी कभी, हम लोग भी कभी कभी सुबह उठ नहीं पाते जप करने के लिए, कभी कभी लेट होता है, रात को इमरजेंसी आती है तो नहीं होता है, कुछ हुआ होगा, तो वो देर से जा रहे हैं और साधु लोग लौट के आ रहे हैं अपना प्रातर्विधि करके, और उनकी मुलाकात ऐसे रोड पे हो रही है बीच में, और उनके देखते ही सभी साधुओं ने ब्राह्मणों ने एक वाक्यता से उनको आशीर्वाद दिया, पुत्रवान भव, बिना प्लानिंग के, सोच के नहीं आ रहे थे कि अभी देखेंगे तो उनको आशीर्वाद देंगे, ऐसा नहीं, स्वयं स्फूर्त आशीर्वाद उनके हृदय से निकला, वो भी एक वाक्यता से, सबके हृदय में एक ही प्रेरणा, एक ही वाक्य और एक ही आशीर्वाद निकला, और सब लोग भी आश्चर्यचकित हो गए, अरे हमने सब लोग ने एक वाक्यता में कैसे बोला ये मंत्र बिना प्लानिंग किए हुए। तो नंद बाबा हंस पड़े, वो क्या बोलते हैं, अभी अभी कोई उम्र है पुत्रवान होने की, ये सब कुछ उम्र तो चली गई अभी, और हंस पड़े और चले गए। साधु लोग कुछ देर के बाद होश में आए, अभी जब ये बोले तभी भावना के पराकोटी में थे ना, बाद में होश में आए, अरे अभी ये उम्र में पुत्र कैसे होगा उनको, माता यशोदा भी बहुत वृद्ध वयस्क हो गई है, और हमने कैसे बोल दिया ये, वो भी तूने भी बोला, मैंने भी बोला, सब लोग ने बोला, क्या रहस्य है इस बात का, परेशान हो गए। साधु के पास गए, वहाँ के लोकल साधु कौन है बताइए, नंद बाबा के रेजिडेंट साधु कौन है, शांडिल्य मुनि, हाँ नंद बाबा जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ उनके साथ वो बसते थे, जैसे वहाँ से वो जब नंदगांव गए तो नंदगांव में भी वही बसे हुए, जब परजन्य महाराज नंदगांव में थे और प्रेम तड़ाक तीर्थ में तपस्या कर रहे थे तभी भी शांडिल्य मुनि वहाँ पर निवास करते थे, ये उनके कुल पुरोहित जैसे हैं, और जब भी वो परजन्य महाराज गोकुल में नदी किनारे आए तो ये भी वहाँ पर जाके बसे, फिर वापस नंद महाराज वहाँ गए तो वापस वहाँ जाके बसे। तो ये गोकुल में जब ये घटना हो रही है तो गोकुल में सब शांडिल्य मुनि के आवाज, क्योंकि लोकल साधुओं के गुरु भी है वो, कुल पुरोहित भी है, महाराज जी आज सुबह सुबह हमने ऐसे ऐसे बोला, और अगर अभी स्थितिजन्य जो परिस्थिति है वो देखकर इनको पुत्र नहीं होता है तो लोगों का ब्राह्मण के वाणी पर विश्वास खत्म हो जाएगा, ब्राह्मण लोग कुछ भी बक देते हैं, क्या होता है कभी, क्या ऐसा लगेगा लोगों को, तो क्या करना चाहिए आप हमें, अभी आज आजकल हम जो ब्राह्मण अभी कुछ बोलेगा और कुछ नहीं होगा, नोबडी विल बॉदर, समझ आया, मैं आपको आके घर में बोलता हूँ अमर गोपी माता जी अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव, आप भी हंसेंगे मैं भी हंसूंगा, अभी ऐसे हंस रहे अभी भी हंसेंगे है ना, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ब्राह्मण ने कुछ बोला ना तो होता था एक्चुअली, आपको पसंद हो या ना पसंद हो आपको वो स्वीकार करना पड़ेगा, अगर वो बोल दिया हृदय से आशीर्वाद, हमने बोला हुआ है और नहीं होगा तो लोगों का श्रद्धा ही उड़ जाएगा ब्राह्मण को, तो क्या करना चाहिए, तो शांडिल्य मुनि समझ गए कि भगवान का कुछ संकेत है इसके अंदर। उन्होंने कहा वही मंत्र दिया जो रुक्मिणी ने बाद में ब्राह्मण को दिया है, वही मंत्र। तो मंत्र तो ऐसा इटर्नल मंत्र ना, शाश्वत मंत्र है वो, चिरंतन मंत्र है, ऐसा नहीं कि वो बाद में पैदा हुआ। तो वो मंत्र शांडिल्य मुनि ने वो ब्राह्मणों को दिया और बोला कि इस मंत्र के आपको 18 कोटि आहुति वाला यज्ञ करना है। 18 कोटि आहुति मतलब स्वाह, एक मंत्र बोल के स्वाहा इदम विष्णवे इदम नममा जो भी कुछ है। और तुरंत उन्होंने श्रद्धापूर्वक यज्ञ कुंड बनाया और उस मंत्र की 18 कोटि आहुति दी। और जब 18 कोटि भी लास्ट आहुति जब दी उन्होंने श्रद्धापूर्वक, तो उस यज्ञ कुंड से नील तेज निकला सबके सामने। वो ऐसा इट वॉज नॉट लाइक मिसिंग इवेंट, यू कैन नॉट मिस दैट इवेंट। अभी समझो मैं बैठा हूँ यहाँ पर, सडनली बीच में से अग्नि उत्पन्न होगा तो यू कैन नॉट मिस इट, सब लोग पीछे मुड़ के देखेंगे अग्नि कहाँ से पैदा हुआ। वैसे अग्नि से नील तेज उत्पन्न हुआ और वो नील तेज आकाश में जाकर एक बालक रूप धारण किया और वो बालक रूप फिर नीचे आया, नील नील बालक रूप, और नंद बाबा के हृदय में प्रवेश किया उसने। और नंद बाबा के हृदय में प्रवेश करते ही नंद बाबा इतने सुंदर, इतने इतने सुंदर बन गए, तेजस्वी बन गए कि वो खुद भी आनंद का, प्रफुल्लित होने का अनुभव किया। उन्होंने खुद को आनंद का अनुभव किया, लोगों ने सुंदरता का अनुभव किया। कुछ देर वो नील बालक नंद बाबा के हृदय में विश्राम करने के बाद में यशोदा के हृदय में प्रवेश किया। सबके आंखों के सामने हो रहा है, ये कोई प्राइवेट सीन नहीं है, गुप्त सीन नहीं है, सब देख रहे हैं इसको। क्योंकि अगर नंदगांव में गोकुल में कोई यज्ञ हो रहा है तो नंद बाबा यशोदा बाबा नहीं आएंगे क्या? वो भी उधर बैठे हुए, उनके हृदय प्रवेश करते यशोदा माता वैसे ही सुंदर है, इतनी हजारों कोटि गुना सुंदर हो गई वो, इतनी तेजस्वी, उसके शरीर से तेज निकलने लगा, बहुत आनंदी हो गए, प्रफुल्लित हो गए, सब लोग देखे खुश हो गए। फिर वही बालक यशोदा के हृदय से उसके गर्भ में विस्थापित हो गया, प्रस्थापित हो गया, विस्थापित नहीं, प्रस्थापित हो गया, एस्टैब्लिश हो गया, और यशोदा माई गर्भवती हो गई। और ये दिन कौन सा है? मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। एक्चुअली स्पीकिंग कार्तिक पूर्णिमा के बाद वाला दिन है, क्योंकि हमारा कैसा कैलकुलेशन होता है, एक महाराष्ट्र में कैलकुलेशन है कालगणना, उसको कहते हैं अमावास्यांत कालगणना। शुरू महीना होता है प्रतिपदा से, समाप्त होता है अमावस्या को, ये हमारा महाराष्ट्र का अंडरस्टैंडिंग है। और उत्तर प्रदेश जाएंगे, बिहार जाएंगे, और कोई वैष्णव जगह पर जाएंगे या बंगाल में भी जाएंगे तो महीना पूर्णमास्यांत होता है। हमारा अभी कल से कार्तिक मास शुरू हो रहा है, उसका कैलकुलेशन कैसा है? आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा, भाद्रपद से अश्विन पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा। तो हमारा हम लोग वो कार्तिक कार्तिक बोलते हैं, वो कार्तिक नहीं एक्चुअली, वो दामोदर मास है, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक गिनते हैं उसको ना, तो 4 महीने पूर्णिमा से पूर्णिमा तक गिनते हैं। हमारा चतुर्मास आरंभ भी आषाढ़ पूर्णिमा को होता है, प्रथम महीना, जिसमें हम लोग वो पालेबाजी नहीं खाते, है ना। तो ऐसे जब भी दामोदर मास समाप्त हुआ, दामोदर मास तो नाम बाद में पड़ा, लेकिन दामोदर मास का जो कैलकुलेशन है ना, अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा सब समाप्त हुआ, उसके नेक्स्ट डे यशोदा माई गर्भवती हो गई। मतलब महाराष्ट्र के गणित के अनुसार कार्तिक वद्य प्रतिपदा, यूपी के कालगणना के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा। वही घोल मतलब है, कन्फ्यूजन है कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में भी। उस कैलकुलेशन के अनुसार गर्ग संहिता में लिखा है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को कृष्ण का जन्म हुआ, लेकिन हमारे महाराष्ट्र की गणना क्या बोलते हैं? श्रावण वद्य अष्टमी के दिन कृष्ण का जन्म हुआ, है ना। तो ये मंत्र का मैंने 2 कहानी बताई, एक तो रुक्मिणी ने दिया ब्राह्मण को और उसी मंत्र के आधार पर यशोदा माई गर्भवती हो गई। और जब यशोदा माई गर्भवती हो गई उसी समय योग माया ने भी हृदय गर्भ के अंदर प्रवेश किया और यशोदा माई ट्विन प्रेगनेंसी में स्थित हो गई। क्यों हो गई? योग माया क्यों प्रवेश किया? एनी रीजन? उधर एक, हर टाइम एक एक, इधर ट्विन क्यों? क्योंकि भगवान ने 2 बार ऐलान किया था। एक बार जब गोलोक वृंदावन में गर्ग संहिता के अनुसार भगवान ने ऐलान किया कि 7वें गर्भ के रूप में मेरे बड़े भैया आएंगे, और योग माया को बुला के बोला तुमको उनको विस्थापित करना है और रोहिणी के घर में प्रस्थापित करना है, और ये काम के लिए मैं तुम्हें मेरी बहन बनाऊंगा। और जब एक्चुअली हुआ, बलराम जी आए, अनंत शेष जी आए, देवकी के घर में विराजमान हो गए, और कुछ समय के बाद में उनको स्वप्न आया कि मेरा बालक तो जा रहा है, मतलब एक गर्भपात का अनुभव हुआ उसको, और वास्तव में भी हुआ, स्वप्न में भी हुआ। जब ये कार्य योग माया ने अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा किया, इस गर्भ से उस गर्भ में प्रस्थापित किया, तो भगवान ने उसको अपनी बहन बनाया और सहोदरा हो गई वो, भगवान की एक ही माँ की उदर में जहाँ भगवान थे वहीं पर वो क्या कहते हैं उसको, प्रेगनेंसी में आ गई। इसका अर्थ ये है, ये सब प्रमाण से बता रहा हूँ मैं आपको, एक शास्त्र है रुद्र यामल नाम का शास्त्र है, उसमें यह प्रमाण दिया है कि यशोदा मैया अलग से प्रेग्नेंट हुई थी, और वो कृष्ण नहीं थे जो देवकी के गर्भ में आए थे। देवकी के गर्भ में जो कृष्ण आए थे वो थे ऐश्वर्य कृष्ण या वासुदेव कृष्ण, मतलब वैकुंठ वाले कृष्ण, और जो यशोदा के गर्भ में आए वो है माधुर्य कृष्ण, यशोदा कृष्ण। उनके अंदर कोई लवलेश नहीं है ऐश्वर्य का, ऐश्वर्य पूर्ण है वो, लेकिन एग्जिबिट नहीं करते, प्रकट नहीं करते। इतना तक उनका पावर है माधुर्य का कि वो कोशिश भी कभी कभी करते हैं ऐश्वर्य दिखाने का, तो ब्रजवासियों के सामने वो फेल हो जाता है। होता है कि नहीं, मुंह खोला ब्रह्मांड दिखाया, बाद में भगवान को लगे सही नहीं है, इधर ऐसा करना नहीं चाहिए, मैया अभी तुरंत जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय से मंत्र बोलने लगी, तुरंत यशोदा मैया ने शुरू कर दिया ना पूरा अपना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह ओम सहस्त्र शीर्षा सहस्त्रपाद सब उमिम बित्वा अत्याधिष्ट दशांगुलम, बोले ये सब पुरुष सुक्त वगैरह यहाँ बोलने का कुछ काम ही नहीं है वृंदावन में, और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने मुंह में ब्रह्मांड दिखाया, तुरंत मुँह बंद कर दिया, बस सीन बंद, इमीजिएट कट, तो भूल गई वो, तुरंत गोद में लिया और स्तनपान कराया, फिर जाके ऐश्वर्य दिखाने का प्रयास किया, वो रासलीला के बाद में चतुर्भुज बन के खड़े हो गए रास्ता में, राधा रानी ने उनका उनको देखा, ऐसे देखा ऐसी नजर गिरी उनके ऊपर, ऐसा कटाक्ष गिरा कि उनको ही पता नहीं चला कि दो भुजा किधर गई और चार शस्त्र किधर गए, समझा है, शंख चक्र पद्म गदा ये चार किधर गए और दो एक्स्ट्रा हैंड किधर गए और दो एक्स्ट्रा हमने मुरली कब आई और मैं बजाने कब लगा, ये कुछ समझा ही नहीं उनको, इतना वो माधुर्य के खुद वश में रहते हैं, खुद के ऊपर उनका नियंत्रण रहता नहीं है, जब इतना माधुर्य का प्रभाव है कि दो भुजा कब पिघल के गुजर गई और दो चार हाथ में जितने अस्त्र थे वो सब कहाँ निकल गए और मुरली कब आई और बजाने कब लगे, उनको खुद को पता नहीं चला, क्योंकि वो यशोदा कृष्ण है, यशोदा के गर्भ से प्रकट हुए, साथ साथ योग माया प्रकट हुई। और जो वसुदेव को कहा दर्शन दिया ना, वो कौन थे, चतुर्भुज विष्णु नारायण ने दर्शन दिया उनको, उसके कई कारण है, एक कारण यह है कि ये भयभीत थे देवकी वसुदेव कंस के द्वारा, उनको लगा आठवां पुत्र आएगा तो उसको भी कंस मार देगा, तो उनको हौसला बढ़ाने के लिए वो विष्णु के रूप में आए, डोंट वरी मैं विष्णु हूँ, मैं कोई साधारण बालक नहीं हूँ, और चिंता मत करो मैं उसका वध करने के लिए आया हूँ, उसका वध करूँगा मैं, पहले मुझे लेके जाओ, वैसे मैं कहूँगा वैसे करो। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि मुझे आपका स्तनपान करने की इच्छा हो रही है, आप मेरी माता हो, तो वो कहती है अरे स्तनपान करने के योग्य बन के तो आओ, ये चार भुजा शंख चक्र पद्मा लेके मेरे गोद में कैसे आओगे आप। तो कहते ठीक है मैं आपके योग्य होकर आऊँगा, लेकिन उसके बाद मुझे लेके जाना है आपको, छोड़ देना है। तुरंत भगवान अदृश्य हो गए और बालक के रूप में गोद में आ गए, फिर देवकी ने उनको स्तनपान कराया और फिर वो उनको लेकर चले गए। तो अभी वसुदेव के हाथ में कौन है, वासुदेव कृष्ण, ऐश्वर्य पूर्ण कृष्ण। वो यमुना जी पार करके वहाँ पहुँचे तो योग माया का काम अभी चालू है, शुरू कहाँ से हुआ, ट्रांसफर से पहले शुरू हुआ, उसके बाद में गर्भ में आई, उसके बाद में जैसे ही जन्म हुआ इधर देवकी कृष्ण का, सभी पैरदारों को सुला दिया, डोळ्यात तेल घालून जे पहारा करत होते ते डारारून झोपून गेले। बाद में आओ जादू देखो योग माया का, सब श्रृंखलाएं गिर गई अपने आप ही, कोई खोलने को नहीं आया, अपने आप गिर गई, दरवाजे के ताले अपने आप खुल गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात दरवाजे पूरे अपने आप खुलते गए ऑटोमेटिक, जैसे बटन दब रहा हो कोई ऐसे। फिर बाहर आए तो आ रहा सुंदर सुंदर वर्षा हो रही है, वारी बिंदु गिर रहे हैं, लेकिन फिर जोर से गिरने लगी बारिश, यमुना जी और जोरदार उछल कर आई और फिर वो उसने वहां पर भी अपना प्रभाव दिखाया। क्या यशोदा देवी जब भी प्रसूत हो गई, यानी उनको जब बालक हुआ, जन्म हुआ बालक का, तो सब लोग सो गए गोकुल में, एवरीबडी। यशोदा के अकेले ऐसे नहीं कि भाई प्रसूति की ग्लानी थी उसको तो वो थक गई बेचारी सो गई, पता नहीं चला एक हुआ दो हुआ मालूम नहीं पड़ा, ऐसा नहीं। वो भी ग्लानी में थी, लेकिन बाकी थोड़े लोग ग्लानी में थे, सुतिका, रोहिणी, कितने लोग थे उधर, लेकिन एन मास नंद बाबा ग्वाल बाल सब लोग सो गए योग माया का प्रभाव से। अभी जब इनका जन्म हुआ ना इधर, तो वो भगवान का नक्षत्र कौन सा है बताइए, जन्म का नक्षत्र कौन सा है बताइए, पक्का बताइए। प्रभु राम का नक्षत्र कौन सा है जन्म का? पुनर्वसु, है ना। तो हर एक नक्षत्र में चार चरण होते हैं, और भगवान का मथुरा में जन्म जो हुआ वो रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ, और कुछ का समय होता है, कुछ 20 मिनट का, आई डोंट नो एग्जैक्टली, पर फिक्स समय होता है, चार चरण इक्वल चरण के होते हैं। तो जितना जन्म होने के बाद में माता पिता के साथ चर्चा किया, आदेश दिया, हौसला बढ़ाया, दूध पिया छोटा बनकर और निकले बाहर, उतने में वो चरण चेंज हो गया, और उधर तीसरे चरण में यशोदा ने बालक को जन्म दिया। तो इनके जन्म के भी टाइम के भी अंतर है, एक चरण का अंतर है। तीसरे चरण में यशोदा का बालक का जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ तभी यात्रा कर रहे हैं वहाँ पर, और वो सब लोग सो जा रहे हैं, सब लोग, एवरीबडी स्लीपिंग। और फिर यात्रा करके यमुना जी के पार होके गोकुल में आए, जब अंदर आए ना, देखो आप एक सोचिए बात, समझो आपके आप में कोई बालक है, आप पुरुष हो, तो आप किसी भी स्त्री के सूचिका गृह में प्रवेश कर सकते हो क्या? हाँ, यू विल हैव संकोच ना। अरे हम तो हमारे हॉस्पिटल में, हमारा खुद का हॉस्पिटल है, लेकिन हम भी कभी डिलीवरी के रूम में प्रवेश नहीं करते। अगर बालक के लिए कोई प्रार्थना करने, कुछ संस्कार करना है, तो बालक को एक अलग रूम में लेके आते हैं साफ करके, और वो रूम में केवल बालक रहता है, फिर हम जाते हैं पुरोहित और वहाँ पर कुछ मंत्र वंत्र बोलते हैं। ये तो सीधे सूतिका गृह में प्रवेश कर रहे हैं, इमेजिन। आप बोलेंगे कैसा मर्यादाहीन पुरुष है, सब मर्यादा प्रतिक्रम करके प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन वो जायज़ है क्योंकि वो भगवान की इच्छा से कर रहे थे। उनको खुद को संकोच था, लेकिन जब भगवान ने आदेश दिया है कि जाओ और वहाँ माँ का बालक रखो और अपनी एक कन्या को लेके आओ जो भी है, इसलिए वो अकेले अंदर घुसे और क्या देख रहे हैं, सभी लोग सो रहे हैं, यशोदा देवी भी सो रही है, उसके गोद में दो बालक हैं, एक पुत्र और एक पुत्री, उसके हाथ में एक पुत्र है। तो जैसे कहा गया है, उसने उस पुत्र को वहाँ रखा, तो रखते ही उन्होंने लाया वो पुत्र जो है यशोदा के पुत्र में विलीन हो गया, एक रूप हो गया। इसका मतलब माधुर्य कृष्ण जो ओरिजिनल कृष्ण है, उनके अंदर ऐश्वर्य कृष्ण प्रवेश कर गए। अब रिजल्ट क्या हुआ, बचे कितने? दो, एक पुत्र और एक पुत्री। तो भगवान के आदेश अनुसार पुत्री को उठाया और लेके आए, फिर यमुना जी ने रास्ता दिया। यह है भक्त का निश्चय। मैंने कई बार सोचा इसके बारे में, पता नहीं आपने सोचा है कि नहीं। समझो अभी भगवान ने आपको बोला होता कि अभी का अभी बालक को ले, मुझे लेके वहाँ छोड़ के आओ, और आप निकले और निकल गए, देखा अरे इतनी बड़ी वर्षा हो रही है, तो आप क्या बोलते हैं, बाद में जाएंगे, इतनी वर्षा हो रही है। समझो अभी अब मैं निकलता हूँ यहाँ पर और तुरंत धुंधुर वर्षा होती है, मैं वापस बिल्डिंग में आ जाऊँगा, प्रभु जी को फ़ोन कर, प्रभु जी बारिश आ रही, गाड़ी भेजो। लेकिन आपने सोचा क्या कभी कि वसुदेव वापस आए? अभी जाना है मतलब अभी जाना है, आंधी हो तूफान हो क्या जो होना है हो, तो क्या हुआ, वो निश्चय से बाहर निकले तो तुरंत अनंत शेष उनके ऊपर आ गए। तो आचार्य बताते हैं कि जब भी भगवान की सेवा में जीव अपने आप को रुजू कर देता है, तुरंत अनंत शेष उस पर छत्र छाया के रूप में चले जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि बारिश से बचाने के लिए आ गए, हाँ वो तो एक एक्सटर्नल रीजन है, लेकिन उसका मचितार्थ क्या है कि उस बख्श की रक्षा करने का कर्तव्य बलराम जी निभाते हैं अनंत शेष के रूप में। आपकी हर प्रकार से रक्षा भगवान बलराम जी करते हैं जब भगवान की सेवा करने का निश्चय हम कर लेते हैं किसी भी स्थिति में। उसको पता नहीं है वसुदेव को कि छतरी पीछे से आ रही है, ही इज जस्ट वॉकिंग, वो पीछे से जर्नी करते करते आ रहे हैं अनंत शेष। इतना सुंदर है हमारा भक्ति का मार्ग है ना। और भी बता दूं आपको, अनंत शेष तो आते ही हैं भक्त के पीछे पीछे, सुदर्शन चक्र उस भक्त के पीछे इर्द गिर्द दौड़ते रहता है हमेशा। भगवान का सुदर्शन चक्र जो है, ब्रह्मा जी ने बताया ये बात कि जब भी कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेने का संकल्प लेकर नाम लेना शुरू करता है, उस समय से भगवान का चक्र उसकी रक्षा करना आरंभ कर देता है। उस समय से ब्रह्मा पूजा का साहित्य जोड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? एक दिन ये मेरे लोक से होते हुए गोलोक जाएगा तो मैं उसका पूजन करूंगा। ब्रह्मा स्टार्ट्स कलेक्टिंग पैराफ्रेज ने लिया ऑफ वर्शिप। हम लोग सोचे क्या हरे कृष्ण मंदिर है, इतनी क्या बड़ी बात है, क्या चमत्कार होने वाला है, कुछ तो बदलता नहीं है ना, पगार बढ़ा ना, बच्चे हुए ना, गाड़ी आई ना, फ्लैट हुआ क्या मिला एक जोक है हमारे हॉस्पिटल में, मैं शुरुआत में ना, मेरे तीन काउंसलिंग ग्रुप थे। हाँ, एक था केवल वार्ड बॉय आया भाई का ग्रुप था अलग, और वो हॉस्पिटल ऑन ड्यूटी में उसकी काउंसलिंग मीटिंग करता था। सब 16 माला वाले बोले, 12 लोग 16 माला बन गए थे एकदम अर्ली ईयर्स में। हाँ, तो इसमें से एक लड़का आया, बोला प्रभु जी मीना तो जब करना छोड़ दिला है। बोले कहा, सबसे तो उत्साह आप ही थे लीडर, 16 माला करने में पहले आप ही थे। हाँ प्रभु जी, वो बात तो सही है लेकिन मैंने कर दिया, बंद कर दिया। बोले क्यों? बोले 2 साल हो गए 16 माला कर रहा हूँ, ना प्रमोशन हुआ ना इंक्रीमेंट हुआ। तो मैंने बोला तुम प्रमोशन के लिए कर रहे थे, तुमको लगता था कि ये करने से प्रमोशन मिलेगा, पगार बढ़ेगा, घर आएगा, सब कुछ अच्छा लग। बोला गलत धारणा है तुम्हारी ये। तो हमारे में से भी कई लोग ऐसा सोचते रहते हैं कि मैं तो भगवान की भक्ति करता हूँ, मेरे जीवन में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे घर में किसी को कैंसर नहीं होना चाहिए, मेरे घर में किसी का लॉस नहीं होना चाहिए, मेरे घर में कभी आग नहीं लगनी चाहिए, मेरे बच्चे को कभी बीमारी नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं अरे तुम लोग को कैसे हुआ ऐसे, तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम्हें क्यों ऐसा होना चाहिए। तो ये इस भावना से हम लोग सबको मुक्त होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भगवान के नाम का जप इसमें से किसी भी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं भगवान का नाम? सारे उद्देश्य तो आपने समाप्त कर दिए। मैं सोच रहा था कितने सारे उद्देश्य है, अच्छा था उद्देश्य भी है, काम भी चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, देयर इज अ गोल, देयर इज अ मेथड, देयर इज एवरीथिंग, संकल्प इज देयर, संकल्प है, मेथड है, साधन है, साध्य है, लक्ष्य है, सब कुछ है, कितना परफेक्ट था, आपने पूरा मिटा दिया, तो अभी क्यों कर रहे हैं हम जप? तो हमको पता होना चाहिए कि हम जप केवल भगवान के संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, समसिद्धिर हरितोषणम, इसके अलावा कोई पर्पज नहीं होना चाहिए भगवान के नाम का जप करने के लिए। ध्यान रखना, कोई भी पीछे आगे बैठे हुए सोचते होंगे कि भाई अभी मैं जप कर रही हूँ क्योंकि बालक होने की संभावना है, इसलिए मुझे कोई बताया कि 16 माला नहीं 20 माला करो, कार्तिक में बच्चा हो जाएगा आपको, तो छोड़ दो आप इस बात को, बच्चा होगा तो होगा लेकिन आप उसके लिए जप मत करो, प्रमोशन के लिए, लोन पास होने हो जाने के लिए, ट्रांसफर मेरे घर के पास गांव के पास होना चाहिए, ये सब चीज के लिए आप भगवान का भजन मत करो, क्योंकि भगवान को आप परम कृपा करने से रोक रहे हैं। वो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं और आप बोल रहे हैं मुझे बच्चा दो, तो बच्चा ही देगा, वो दे सकता है, क्या नहीं कर सकते वो। लेकिन राजा के पास जाकर अगर कोई व्यक्ति 2 रोटी मांगेगा तो राजा मन में हंसेगा। क्यों? राजा बोलेगा कि मैं चाहूं तो इसके जीवन भर के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूं एक झटके में, एक इशारे पर, और ये केवल 2 रोटी मांग रहा है, वो भी आज ही खत्म हो जाएगी, शाम को फिर भूख लगेगी उसको। तो राजा के पास जाकर 2 रोटी मांगना बहुत मूर्खता की बात है ना। इससे मेरे को और एक कहानी याद आ रही है, ये पॉइंट का सबको समझ में आया ना। हम लोग, कोई भी लोग भगवान का नाम का जप किसी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करते हैं और नहीं करना चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि वो भौतिक लाभ के लिए करना ये सबसे बड़ी मूर्खता का लक्षण है, क्योंकि भौतिक लाभ की एक शुरुआत होती है और एक अंत होता है। आद्यंतु वंतु कौनते या नतेषु रमते बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी उन चीजों में रुचि लेता नहीं है जिसकी शुरुआत और अंत है, क्योंकि हमारी जरूरत उन चीजों की है जो शुरुआत हो सकती है लेकिन अंत नहीं है, चिरंतन, शाश्वत, ऐसे वस्तुओं की हमारी जरूरत है। और जब तक ऐसी वस्तु हमें नहीं मिलती है तब तक हम संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकते। तो देखो भूल गया, वो कहानी को भी मन में आई थी तो बताने वाला था उसके बाद। एनीवेज, तो इस तरह से ये गोपाल, वो जो मंत्र है उसके बारे में आपको मैंने बताया। अभी कल से कार्तिक मास का आरंभ हो रहा है, किससे आरंभ हो रहा है? शरद पूर्णिमा से, है ना। तो ब्रज में ना ये बहुत बड़ा उत्सव है, और वो ऐसी लीला है कि साधुगण भी उसको कहने में संकोच करते हैं, अपने आप को योग्य नहीं समझते हैं इन लीलाओं का वर्णन करने के लिए। लेकिन हम कुछ भार भार रूप से उसका थोड़ा सा आकलन करने का प्रयास करेंगे। बाय द वे, सब लोग राम भगवान को बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो क्वेश्चन उस पर रेज कर सके, कोई भी उनकी मर्यादा पर प्रश्न उठा नहीं सकते। इतना आदर्श व्यवहार किया उन्होंने कि कोई भी फॉल्ट निकाल नहीं सकता। कितना भी आदमी फॉल्ट निकालेगा ना, उनमें से निकाल नहीं सकता है फॉल्ट। नो फॉल्ट फाइंडिंग इज सक्सेसफुल एज फार एज लॉर्ड राम इज कंसर्न्ड। और कृष्ण का कैसा है? हर कुछ चीज तोड़ के ही करना है, हर काम नियम तोड़ के ही करना है। बचपन से शुरू किया उन्होंने, बचपन से ही। तो सब लोग उनको ताने देते हैं कि राम भगवान है, कृष्ण ही भगवान है। अरे बीच रात में सभी किसी किसी के औरतों के साथ नाच करते हैं, वो नृत्य करते हैं, ऐसा कोई भगवान होता है? भगवान मतलब नीतिमान, नीति के मूर्तिमान स्वरूप। और सब नीति विरुद्ध काम भगवान कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए भागवत में नवे स्कंद में रामायण का उल्लेख किया गया है। जब भागवत में नवे स्कंद में रामायण शुरू हुई सुखदेव जी के द्वारा, तो कुछ लोग टेंशन में आ गए, क्योंकि नवा स्कंद कभी शुरू हुआ? नवा स्कंद शुरू हुआ थर्ड दिन के बाद, फोर्थ डे को अप्रोक्सीमेट। हाँ, 3.5 days में नौ स्कंद पूरे हुए, मतलब चौथे दिन के हाफ तक नवा स्कंद चला, और आगे के 3.5 दिन जो है वो दशम स्कंद तो बहुत दिन चला, कम से कम 2.5 days, और फिर 11 और 12 का स्कंद एक दिन में हुआ, ऐसा एक रफ अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन 3.5 days का मुझे पक्का पता है कि 3.5 days में 9 स्कंद समाप्त हो गए। तो नवा स्कंद में जब रामायण शुरू किया तो सुखदेव जी तो मूड में आकर रामायण बोल रहे हैं। तो कुछ संतों को टेंशन आ रही, अभी रामायण के अंदर घुस गए। रामायण में कितने श्लोक है पता है आपको? कितने श्लोक है? 24,000 श्लोक है। और भागवत में कितने श्लोक है? 18,000। अभी 18,000 श्लोक के लिए 7 दिन का समय दिया है, बीच में 24,000 श्लोक घुसेड़ दिए तो क्या होगा? द कैलकुलेशन गोज रॉन्ग ना। आपने कुछ प्लान करके सोचा है कि इतना इतना इनको बताना ही है इतने समय के अंदर, तब मेरा काम पूरा हो जाएगा। और रामायण में लग गए तो लोगों को टेंशन आया, तो उन्होंने उनको बोला आपका समय जरा कम है, आप संक्षिप्त में बताइए। तो भागवत में एक श्लोक की रामायण भी है, भागवत में एक श्लोक की रामायण है, एक ही श्लोक में रामायण समाप्त कर दिया उन्होंने। लेकिन बताया जरूर, क्यों? कारण क्या उसका? अभी इतना लंबा रामायण एक श्लोक में बताने की जरूरत ही क्या है? बताओ ही मत ना, आगे चले जाओ। नहीं, उसका जरूरत को समझा, क्योंकि भगवान रामचंद्र के द्वारा प्रस्तापित की गई मर्यादा को पालन किए बिना कृष्ण का चरित्र हम समझ नहीं सकते हैं, इसलिए रामायण बताना जरूरी था। मेंशन क्यों ना हो, करना जरूरी था। हम लोग कितना भी साधना करेंगे ना, जब तक हमारा आचरण आदर्श नहीं है राम जैसा, इसलिए क्योंकि राम का चरित्र अनुकरणीय है। राम का चरित्र आप डुप्लीकेट खुद पालन कर सकते हैं, कृष्ण का अनुकरण नहीं है। कृष्ण को सुन सकते हैं आप, कृष्ण का चरित्र आप क्या कहते हैं उसको इमिटेट नहीं कर सकते, उनके नकल नहीं कर सकते। नकल करेंगे तो पूरा 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 गड्ढे में गिर जाएंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से पूरा पतन नाश हो जाएगा हमारा। लेकिन राम का हर एक व्यवहार जो है, पूरे उनका जीवन चरित्र का हर एक व्यवहार जो उन्होंने किया है, वो सब हम लोग कर सकते हैं। वो हम लोगों को करने के लिए भगवान ने वो मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार लिया था। इसलिए आचार्य बताते हैं कि सुखदेव जी ने संक्षेप में क्यों ना हो श्री कृष्ण का चरित्र को बताने के पहले प्रभु रामचंद्र के चरित्र का उल्लेख किया। तो हम लोगों को क्या समझना है उससे, कि जब तक प्रभु रामचंद्र के द्वारा स्थापित किए गए मर्यादाओं का हम परिपूर्ण पालन नहीं करते हैं, तब तक हम भगवान की किसी लीला को समझ नहीं सकते। एज अ मनोरंजन आप सुन सकते हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा, साक्षात्कार अनुभूति कुछ नहीं प्राप्त होगी। वैसे भगवान का चरित्र है, और भगवान के चरित्र का चरम जो स्थान है वो ये रास पंचाध्यायी है। ऐसे एक हर एक चरित्र में स्पॉट्स हैं, ऐसे चैतन्य चरितामृत में रथ यात्रा का एक एक पांच स्पॉट में से एक स्पॉट है जो हाईएस्ट जो वहां पर एक्सप्रेशन हुआ है। वैसे भागवत में ये जो रास पंचाध्यायी है वो एक प्रमुख लीला है, इसमें भगवान ने सर्वोच्च भाव को प्रकट किया है। और कौन सा भाव प्रकट किया है कि जीव और हम यानी जीव और भगवान, इनके बीच में जो संबंध है ना वो कैसा संबंध है? एक संबंध है कि ममय वांछो जीवलोके जीवभूत सनातन, मतलब हम उनके अंश हैं। दूसरा अर्थ यह है कि वो हम उनके प्रेम प्रेम के संतान हैं, मतलब मैं मतलब हम उनके बहुत डियर प्रिय संतान हैं। अंश होना एक सिद्धांत की बात हो गई, लेकिन भाव की बात करेंगे तो हम क्या है, भगवान के सब हम सब लोग प्रिय संतान हैं, भगवान हम पर बहुत प्रेम करते हैं। तो जीव और भगवान के बीच में केवल प्रेम का रिश्ता होता है, और फिर वो प्रेम का रिश्ता सेवा के रूप में प्रकट होता है। प्रेम जो है ना वो सेवा के रूप में अपने आप को प्रकट करता है, सेवा की जाती है प्रेम में। तो वो जो प्रेम का रिश्ता है वो सर्वोच्च प्रेम भगवान का जो है वो रास के रूप में प्रकट होता है। तो लोग समझते हैं कि भगवान किसी और की पत्नियों के साथ में बीच रात में वो भी गलत समय पर गलत कार्य कर रहे हैं, ऐसा लोग समझते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है इसलिए वो समझते हैं ऐसा। भगवान के रासलीला में कोई भी काम वासना का लवलेश नहीं है, वो केवल जीव के प्रति सर्वोच्च प्रति का उच्च कोटि का सर्वोच्च कोटि का प्रेम जो है वो भगवान रास नृत्य के माध्यम से प्रकट करते हैं। और वो भी जो है ना भगवान ने जो रास किया है वो सभी गोपियों के साथ नहीं किया है। जो जो गोपियां काम वासना के परे जा चुकी थी, भले विवाहित थी अविवाहित थी जैसे भी थी, जो जो गोपियां काम वासना के परे जा चुकी थी वही रास में सम्मिलित हुई, और जो अभी भी गृहस्थ में अटकी हुई थी उनको भी प्रेरणा हुई जाने की, लेकिन उनको रोका गया पिता के द्वारा, पति के द्वारा, भाई के द्वारा, इसके द्वारा, उसके द्वारा उनको रोका गया। और जब उनकी जिजीविषा तीव्र रूप से जागृत हो गई तो उन्होंने फिर वो परिपूर्ण हो गई, वो वेदना में उनकी सारी काम वासना जल गई। ये अनुसरण चाहिए, जो लोग भाग सके वो शुद्ध थे वो भागे, सबका विरोध तोड़कर वो भागे जंगल में रात को, और जो रोक गए मतलब जिनको रोका गया वो सब ये गोपियां थी, लेकिन उस दर्द के वजह से उनका सारा हृदय शुद्ध हो गया और फिर उन्होंने वहीं पर शरीर त्याग दिया जहां पर उनको लॉक कर दिया गया, और उनकी आत्मा जो है वो उसमें जाके सम्मिलित हो गई। तो रासलीला कोई साधारण चीज नहीं है। हम लोग सोचते हैं क्या अच्छा है कृष्ण बीच रात में सबकी औरतों के साथ डांस कर रहे हैं, कौन से भगवान है, खास करके क्रिश्चियन लोग ऐसे बताते हैं इज इमोरल गॉड। अरे जिनको मोरालिटी इमोरलिटी नीति अनीति के बारे में ज्ञान ही नहीं है वो क्या बोलेंगे, क्या कमेंट करेंगे भगवान के ऊपर, उनको पता ही नहीं कुछ क्या है। उनके धर्म में भगवान को ऐसे एक फियरफुल व्यक्ति के रूप में प्रस्तापित किया गया है। द पर्सनैलिटी वो शुड बी फियर्ड फॉर, मतलब जिसका डर लगना चाहिए आपको, इसलिए क्या बोलते हैं, अरे बहुत गॉड फियरिंग फैमिली है। कैसे बोलते हैं लोग, कैसे बोलते हैं, बहुत गॉड फियरिंग फैमिली, मतलब बहुत अच्छी फैमिली है, गॉड फियरिंग फैमिली है। वो बहुत घटिया तरीका अंडरस्टैंडिंग है, गॉड लविंग होना चाहिए हमको। तो गॉड लविंग की कल्पना ही नहीं है, भगवान की कल्पना ऐसे बना के रखी है कि ऐसा नहीं करोगे ना तो वो दंड देगा आपको, ही विल पनिश यू। तो इसलिए सब लोग डर के काम करते हैं, जो भी करना है प्रार्थना करना है जो भी कुछ करना है वो नहीं करेंगे तो मारेंगे वो। हमारे धर्म में वो संकल्प नहीं है, हमारे धर्म में प्रेम की संकल्पना है। हमारे घर में भगवान को माखन खिलाते हैं वात्सल्य भाव से, डर के नहीं खिलाते, यशोद मैया माखन नहीं खिला तो शाप देगा मुझे, ऐसा होता है कभी? माखन नहीं खिला तो बीमार पड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा, इसलिए माखन खिला रही है, डर के बारे नहीं खिला रहे। तो ऐसी ये रासलीला है। तो सबसे पहले मन में सब वहम निकाल देना चाहिए। और लोग समझते हैं कि ये जो रासलीला का वर्णन सुनेंगे, रात में एक व्यक्ति कई लड़कियों को मिल रहा है, डांस कर रहा है चांदनी रात में, हाँ, तो इससे लोगों की काम वासना जागृत हो जाती है, ऐसे लोग बताते हैं। लेकिन जागृत किनकी होती है, जिनके मन में काम वासना ऑलरेडी है, वो अगर प्री मैच्योरली ये सुनेंगे योग्यता ना होते हुए तो उनकी आग भड़केगी। लेकिन अगर काम वासना है भी लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति से प्रामाणिक भावना से नम्रता पूर्वक सुनेंगे तो कहते हैं ये काम मर्दन लीला है, इसमें काम लीला काम वासना का मर्दन हो जाता है, ऐसे आचार्य बताते हैं। कैसा है ना, हम लोग अभी आप लोग तो बहुत लोग यहाँ पर इतना कोल्हापुर से दूर से आए हैं, कितना ट्रेन का सफ़र किया होगा, रूम बुकिंग का कितना कष्ट किया होगा, मैनेजमेंट किया होगा। लेकिन अगर आप मनोरंजन करने के लिए आए हैं तो आपका मनोरंजन होगा। अगर आप कृष्ण को जानने के लिए आए हैं, भक्तों का संग करने के लिए आए हैं, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए आए हैं, तो आपके वो होगा। ये तमाम प्रपद्यंते, जैसे जा जो सोचकर हम लोग आए हैं कि प्रसाद बहुत अच्छा मिलता है, बहुत जीव में प्रसाद बहुत अच्छा रहता है, वो खाने के लिए आए हैं तो वो मिलेगा, उसका आनंद मिलेगा। और ये साक्षात वृंदावन है, यहाँ पर शहर में प्रकट हो गया है, गाँव में तो वृंदावन की अनुभूति होगी आपको। मदन मोहन में आपको साक्षात मदन मोहन दर्शन देंगे, काली मूर्ति दिखेगी नहीं आपको। तो हर चीज जैसे आप देखेंगे वैसे आपको दिखेगा ना, जिस रूप में आप दर्शन करोगे वैसा दर्शन पाओगे। उसी प्रकार से भगवान की रासलीला का वर्णन अगर हम सिंसियर भक्तों के मुख से, सिंसियर भावना में, नम्रता से सुनेंगे तो आपका काम वास्ता का मर्दन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी काम वास्ता, ये शक्ति है उसके अंदर। दूसरी बात, ये लीला इतनी महान है इसका बहुत सारे प्रमाण है। शंकर भगवान ने सुना, क्योंकि आसुरी मुनि थे, मतलब वो आसुर नहीं थे, उनका नाम ही था आसुरी मुनि, वो हमेशा भगवान का अपने ध्यान में दर्शन किया करते थे आसुरी मुनि। एक दिन उनको दर्शन नहीं हुआ, बहुत कोशिश किया, ध्यान लगाया, दर्शन ही नहीं हुआ, तो परेशान हो गए तो कि कृष्ण गए कहाँ पर, हृदय में थे, कहाँ गायब हो गए। ब्रह्मा जी के पास गए, हमारे पास नहीं है, तो शिव जी के पास गए कैलाश पे, तो शिव जी को निकलने की तैयारी कर रहे हैं, समझता ना आपको भी, मैं भी निकलने की तैयारी, मतलब उठ रहा हूँ, पहले पैकिंग कर रहा हूँ, तो आपको लगेगा निकल रहे हैं प्रभु जी अभी। शिव जी अपने कैलाश में निकलने की तैयारी कर रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है। तो पहला प्रश्न पूछते हैं कृष्ण भगवान कहाँ है, और सेकंड प्रश्न पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो, तो बोलते हैं कृष्ण इस समय पृथ्वी पर रासलीला आरंभ करने जा रहे हैं और मैं वही जा रहा हूँ, इसलिए आपको वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में इस पृथ्वी पर रासलीला शुरू करने जा रहे हैं। तो वो कहते मैं भी आज आना चाहता हूँ, तो चलो। तो दोनों निकल कर पृथ्वी पर आते हैं। हमने सुना है कहानी अक्सर की, खाली शंकर भगवान ही आए रासमंडल के पास, आसुरी मुनि भी आए, दोनों आए और सीधा अंदर घुसने लगे रासमंडल। रासमंडल कैसे होता है, वो निकुंज कहते हैं उसको, निकुंज। वृंदावन में तीन प्रकार के वन होते हैं, एक है कुंज, वैसे कई टाइप्स है उसके, लेकिन एक क्लासिफिकेशन है कुंज। कुंज कैसा होता है, वो चारों तरफ से खुला रहता है, आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हो, वहाँ पर भगवान कॉमन लीला करते हैं, गौचारण लीला, मतलब कोई भी देख सकता है उसको, देवता से देख सकते हैं, माता भी आके कभी देख सकती है, गोपियाँ भी आके देख सकती हैं, किसी को निषेध नहीं है प्रवेश, उसको कहते हैं कुंज। एक होता है निकुंज जो सब जगह से बंद होता है और केवल एक ही गेट पे खुलता है, और गेट पर कहते हैं सैकड़ों गोपियाँ पहरा देती रहती है, बहुत सारी सैकड़ों गोपियाँ भी शस्त्र अस्त्र से सुसज्ज रहती है, वो किसी भी व्यक्ति अयोग्य को अंदर जाने देती नहीं है। लेकिन अंदर कौन रहता है, सारी गोपियां अंदर भगवान के साथ नृत्य करती हैं, तो उसको निकुंज कहते हैं। और एक है निभृत निकुंज, निभृत निकुंज यानी उसमें केवल गिनी चुनी गोपियां ही अंदर प्रवेश करने योग्य होती है। अभी इसमें कौन सी गिनी चुनी, तो कभी 64, कभी 16, कभी ओनली 4, कभी ओनली 2, कभी ओनली ललिता विशाखा, बस और कुछ राधा कृष्ण और कोई नहीं, कभी 64, या 64 कभी कैसे, वो है ना गेवर कुंड है ना, वो गेवर बन में राधा सरोवर, वहाँ पर भगवान 64 सखियों के साथ रोज स्नान करते हैं। उधर भी एक कुंड है भानुखर, वो भानु महाराज का कुंड है, उसमें भी 64 के साथ में स्नान करती है। तो उनका अलग अलग ग्रुप होता है, वो कहाँ कहाँ क्या करना है वो फिक्स होता है सब। और एक वृंदाकुंड में और एक जगह है गुप्त कुंड, पता है आपको, उधर कोई नहीं जा सकता है, ओनली राधा एंड कृष्ण, उनको मेकअप करना है, श्रृंगार करना है और दोनों को छोड़ देना है, बाकी सब लोग बाहर खड़े रहेंगे, सब जगह से बंद रहेगा, ऑल टाइट सिक्योरिटी, नोबडी कैन गो इनसाइड। ये है वृंदावन। तो वृंदावन आपको लगता है कि अरे जो दिखता है वैसा वृंदावन नहीं है, उसके स्टेजेस है, कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज और गुप्त कुंड, गुप्त कुंज भी है उसके अंदर। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये निकुंज में प्रवेश कर रहे हैं रासमंडल में, सीधे घुस रहे। तो दो सैकड़ों जो थी ना सिपाही गोपी सब रोक दिया उनको, ये कहाँ जा रहे हैं आप, रासमंडल में जाना है हमको, दर्शन करना है। बोले ये शरीर में आप प्रवेश नहीं कर सकते इसके अंदर। अभी किससे बात कर रहे हैं? वो महादेव से बात कर रहे हैं, साधारण चीज नहीं है। महादेव जिनके पुत्र हैं वो भी उनकी पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी, ऐसे महादेव है वो। हर चीज में महादेव है वो, हर चीज में महा है, साधारण वस्तु नहीं है वो। सब देवता में अलग तत्व है वो, एक उसके एक ही व्यक्ति है उस तत्व का, शिव तत्व, एक ही व्यक्ति। हम जीव तत्व है, हम तो अनंत है, ब्रह्मा भी उसमें आते हैं हमारे तत्व में। और एक विष्णु तत्व है, वो भी विष्णु अनंत है, ऐसा नहीं कि एक विष्णु है, अनंत विष्णु है। एक कृष्ण तत्व जो है वो एक ही है, और एक शिव तत्व वो एक ही है। देखो उसमें से ही शंकर भगवान है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर केवल एक ही पुरुष है, बाकी सब स्त्री है। आपको एंट्री करना है, आपको भी स्त्री बनना पड़ेगा। अरे महादेव को बताने की उनको उनकी हिम्मत और उनकी योग्यता भी है कि बता सकते हैं, क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं ना। उनको महादेव से कोई अपराध करने का भाव नहीं है, उनका जो सेवा है वो कर रहे हैं। वो सेवा करते समय कोई डरना नहीं चाहिए किसी को। अगर चपरासी भी आके बोलेगा, प्राइम मिनिस्टर का खत लेके बोलेगा, ए असेंबली हॉल खाली करो, संसद को तुरंत खाली करो, प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर है, तो वो बिल्कुल खुले दिल से बोलेगा वो, क्योंकि वो खुद नहीं बोल रहे, वो प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर खाली बता रहा है आपको। उसी तरह से उनका काम है सबको रोकने का, और बता दिया गाइडलाइन किसको अंदर प्रवेश करना है। अभी शिवजी की महानता देखो, उन्होंने ये सोचा नहीं, क्या समझते हो तुम, पता है तुम किससे बात कर रही हो, पता है तुमको तुम किससे बात कर रही हो, ऐसा सुन लो नहीं क्या। उन्होंने कहा कैसे औरत बनना है बताओ। दैट इज द सिंप्लिसिटी ऑफ द हार्ट ऑफ शिवा। भगवान शंकर महादेव क्यों है? पोजिशन से और शक्ति से नहीं है, इस भाव के लिए महान है वो। उन्होंने देखा नहीं कि ये गाय चराने वाली और दूध निकालने वाली और मंथन करने वाली औरतें मुझे क्या सिखा रही है। पूछा खाली एक ही प्रश्न, कैसे बनना है। ये सोचा नहीं पार्वती क्या कहेगी, अगर मैं स्त्री बन गया तो मेरी पत्नी क्या कहेगी मुझे। सबसे बड़ा प्रश्न, अगर मुझे औरत बनना है तो पहले सोचूंगा मेरी पत्नी क्या सोचेगी। बट वो भी कुछ मन में नहीं आया, उनके उनके मन में कोई विचार ही नहीं आया, केवल कृष्ण को मिलना है बस। तो उन्होंने कहा जाओ मान सरोवर में डुबकी लगा के आओ, तब तुम्हें गोपी भाव और गोपी शरीर प्राप्त होगा। दो चीजें हैं, गोपी शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है, गोपी भाव भी इंपॉर्टेंट है। केवल साड़ी पहन के मैं खड़ा रहूंगा तो थोड़ी मैं गोपी बन जाऊंगा, भाव होना चाहिए ना। तो वो आप ना देखा ताओ, सोचा भी नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या हंसेंगे लोग, नहीं हंसेंगे क्या, कोई परवाह ही नहीं किस चीज की, सीधा निकल गए। और मानसरोवर किधर है पता है आपको? जमुना जी के पार है। ये जो रासमंडल है इस तरफ है, उसको जमुना जी को पार करके, आज तो जमुना जी इतनी सी है, उस समय तो समुद्र के समान चौड़ी थी वो, वहां से छलांग मार के गए। और वो कौन सा स्थान है जहां पर एक बार भगवान से रूठ कर राधा रानी बैठी थी तो अश्रु बहे थे उनके, मतलब उद्विग्न होकर, एंग्विश, उद्विग्न होकर उनके गरम गरम अश्रु वहां पर बहे थे, उसका कुंड बना हुआ है। कितना उत्कट स्थान है वो, वहां पर जाकर डुबकी लगाई उन्हें, और डुबकी लगाते ही गोपी शरीर प्राप्त हुआ, गोपी भाव प्राप्त हो गया। ये गोपी भाव क्या चीज है? अनन्य शरणागति और अनन्य सेवा भाव, ये गोपी भाव है, जिसको सखी भाव भी कहते हैं, तो एक ही शब्द है वो। और जैसे ही बने तो देखा नहीं सब कुछ ठीक ठाक तो है ना, हाँ एवरीथिंग इज ऑल राइट, मेरी उंगलियाँ, मेरे बाल कैसे अच्छे लग रहे ना, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ट्रांसफॉर्म ना, ऐसा नहीं। जैसा बोला वैसा किया, तुरंत छलांग मार के वापस आ गए और उसी उत्सुकता से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। देखो उसमें सब पे एक कॉमन थ्रेड है, वो है लौल्य, अति अति उत्सुकता, ईगरनेस का कोई अंत नहीं है उसके अंदर। फिर प्रवेश कर रहे हैं तो सारी गोपियां जो पैरदा पैरा दे रही है वो हंसने लगी उनको देखकर। क्यों हंस रही? आपने बोला जाके डुबकी लगाओ, डुबकी लगा के अभी क्यों हंस रहे आप? क्योंकि वो जो नुस्खा बताया था ना, वो महादेव के लिए बताया था, वो सांप के लिए नहीं बताया था। हाथ पे सांप, सर पे सांप, गले में सांप, सब जगह सांप ही सांप है उनके, कलाई में सांप, बाजूबंड में सांप, गले में सांप, सर पे भी सांप, सब जगह सांप है। वो सबके साथ डुबकी लगाई लेकिन सांप के सांप ही रह गए, खाली ये गोपी बन गए। अभी समझो कोई पुरुष अगर सांप लेके आएगा तो ठीक है, समझो माता है सांप लोग ऐसे घूमने लगे तो कैसा लगेगा, हाथ में भी सांप ऐसा खड़ा है, इधर भी सांप खड़ा है, इधर भी सांप खड़ा है, सब खड़ा है, हाउ इट लुक। उसलिए वो हंस पड़ी, और उस हंसी में एक बहुत सुंदर भाव था अप्रिसिएशन, कि देखो कितना उत्सुकता है इनके अंदर, भगवान को मिलने की, ये भी भान नहीं उनको कि सांप वैसे कैसे रह गया, सांप उधर ही है अभी, परवाह नहीं है उनको, कैसा लग रहा हूँ, क्या हो रहा है, सांप का क्या हुआ, मेरा क्या हुआ, कोई परवाह नहीं है। इतना लवल्य होना चाहिए भगवान के प्रति, तो भगवान की प्राप्ति होती है। हम लोगों को बहुत परवाह करते हैं, हम लोग बहुत चीज़ों की परवाह करते रहते, सोचते रहते ऐसा होगा तो वैसा होगा तो कैसे होगा। पर महादेव जी का उदाहरण ऐसा है कि किसी भी चीज़ का, अपने पद का भान नहीं है, अपने शरीर पर सांप है उसका भान नहीं है, पत्नी क्या लोग सोचेगी उसका भान नहीं है, किसी चीज़ का भान नहीं है, बस ठाकुर जी को प्रसन्न करना है। और खुद की इच्छा पूर्ण करने के लिए नहीं भागे, वो सेवा भाव से अंदर जा रहे हैं, केवल ड्रामा देखने के लिए नहीं जा रहे, वो टिकट निकाल कर सेवा के भाव से जा रहे हैं। तो उनका ये भाव देखकर ललिता और विशाखा इन गोपियों ने उनका श्रृंगार किया, बहुत सुंदर श्रृंगार किया उनका, 16 श्रृंगार किया। और वो श्रृंगार किए हुए शिव जी, यानी अभी वो गोपीश्वर बने हैं, है ना, गोपी बने हैं, उनको हाथ पकड़ कर लेकर वो रासमंडल के अंदर चले गए। रासमंडल एक बहुत विस्तृत चीज है बाय द वे, हम लोग कैसे सोचते हैं कि भाई 50 औरतें आगे गोल गोल फिर रहे हैं वो रासमंडल हो गया, ऐसा हमको हमारे एक मटेरियल अंडरस्टैंडिंग है, जो हम लोग नवरात्रि में देखते हैं ना, या ठीक है इनका वो बड़ा था, इनका रामलीला गार्डन में था, इनका चौपाटी गार्डन में था, ठीक है, पर रासमंडल एक बहुत विस्तृत अवस्था है। उसके बीच में रत्न सिंहासन है, क्या है बोलते हैं वो, दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमादहा, उसके वे कल्पवृक्ष है, कल्पद्रुम उधर है दिव्य वन के अंदर, और श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थ उधर वो एक रत्न का सिंहासन है, श्रीमद राधा श्रील गोविंद देव उधर दोनों को विराजमान किया गया है, और सब गोपियां उनकी सेवा कर रही है, पृष्ठाली भी सेव्य मानोस्मरामी, सब दिव्य दृश्य है। गुरु जी हमेशा बताते हैं जीवन में कुछ भी हो जाए ना, एक सत्य कभी समाप्त नहीं होता है, ऐसे रहता है। और सत्य क्या है, हम लोग कितना भी घर में किसी की मृत्यु हो गई, पति का देहांत हो गया, पत्नी का देहांत हो गया, माता का देहांत हो गया, पिता का देहांत हो गया, घर में आग लग गई, सब नष्ट हो गया, ध्वंस हो गया, ये सब हो सकता है। भाई देवी मैं कुछ अपशब्द और अपशकुनी भाषण नहीं कर रहा हूँ, उधर यूक्रेन में क्या हो रहा है अभी, मैं जो कह रहा हूँ उससे भयंकर हो रहा है, सबके घर उध्वस्त हो रहे हैं अग्नि से, इससे उससे, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी भक्त को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये सब कुछ भी हो भी रहा है तो भी वृंदावन में एक कल्पवृक्ष के नीचे एक रत्न सिंहासन है, उधर राधा और कृष्ण विराजमान है, और राधा के बाजू में कृष्ण है, कृष्ण के बाजू में राधा रानी है, और वो मुरली बजा रहे हैं। इस सत्य, अगर आप इस सत्य पर आपका ध्यान केंद्रित करेंगे, दुनिया में होने वाली किसी भी दुर्घटना का परिणाम आप पर नहीं होगा। आप भौतिक दृष्टि से अगर ध्वस्त भी हो जाएंगे तो भी आप आनंदी रहेंगे, ये पावर है भक्ति के अंदर। तो फिर ये पूरे विस्तृत रास मंडल, अभी सिंहासन बताया ना आपको मैंने, उसके पीछे फिर 8 सखियां खड़ी है, फिर उसके असिस्टेंट खड़े, ऐसे गोलाकार कमलाकार कमलाकार विस्तार पूर्वक इस कमल की करोड़ों पंखुड़िया है, उस कमलाकार में सब खड़ा है, सब लोग खड़े हैं, अपना अपना पोजिशन लेके खड़े हैं, और हर व्यक्ति सेवा में लगे हुए हैं। क्या कहते हैं वो, अष्टदले प्रधान नायिका, और क्या कर रहे सब लोग, अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं, इतना सुंदर वातावरण है, केंद्र स्थान में राधा और कृष्ण हैं, और सब गोपियां अपनी अपनी सेवाएं कर रही हैं। उधर जाके उनको खड़ा कर दिया, गोपी को हाथ में चामर दिया, और फिर उन्होंने चामर सेवा किया भगवान का, चमर ढुलाबो कबे हेरिबो मुख चंद्रा। चामर सेवा का वैशिष्ट क्या है, ऐसा करेंगे दर्शन करना है, ऐसा करेंगे दर्शन करना है, यहाँ घुमाया दर्शन करना है, फिर यहाँ घुमाया दर्शन करना है, बीच में दर्शन करते करते सेवा करना है। ऐसे एक बार वो क्या सारथी का नाम भगवान का, सारथी का नाम भगवान का दारुक, दारुक, ऐसे वो एक बार चामर कर रहा था, तो चामर करते करते बीच में भगवान का दर्शन किया तो बेहोश होकर गिर गया, वो फेल अनकॉन्शियस। बीच में एक बार और एक बार क्या, तो आंखों से आंसू होने लगे, तो उसको लगा कि आंसू क्यों आ रहे हैं, भगवान दिखते नहीं मुझे उसकी वजह से, आई कुड नॉट सी द लॉर्ड। बाकी लोगों को जो योगी होते हैं ना, योगी, उनको अच्छा लगता कि आंसू आ रहे हैं, रोमांच हो रहा है, हाँ गड्ढा गदगद हो रहा है, मैं एडवांसमेंट कर रहा हूँ, आई एम एडवांसिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। और भक्त लोग कह रहे हैं क्या तकलीफ है, काय ब्याद है, हाँ कितना तकलीफ हो रही है, मेरी बात बात वजन गाने को नहीं हो रहा है, कंठ गदगद हो रहा है, दिखने को नहीं हो रहा है भगवान का दर्शन, आंखों से आंसू आ रहे हैं, हाथ कांप रहा है, तो सेवा नहीं हो रही है, क्यों, मुझे नहीं चाहिए सब कुछ ये। जो स्वार्थी साधक प्राप्त करने के लिए तड़पते हैं, वो प्राप्त होने के बाद भक्त जो है वो परेशान हो जाता है। दिस इज द डिफरेंस इन भक्ति योगा एंड अदर योगाज। तो शिवजी महाराज हमारे बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं, बहुत दिल देर तक भगवान का प्रेम पूर्वक सेवा किया। अरे राधा और श्याम सुंदर इतने प्रसन्न हो गए उनके ऊपर, ला जाओ उनको ले जाओ बाहर और बाहर बिठा दो और बाहर बैठकर ये हमारी पूरा लीला देखेंगे और रास मंडल की रक्षा भी करेंगे। बोलो कितना बड़ा वरदान है जिसमें किसी देवता को ना, अभी ये जो निकुंज है ना ऊपर से भी उनको एंट्री नहीं किसी को, सब बंद है पूरा, ऐसा ऊपर से बंद है पूरा, देवता लोग लाइन में खड़े उधर सीट बुकिंग करके, नो दर्शन, अपना अपना बैंड बजाते हैं ऊपर से लेकिन मैच नहीं होता है। इधर जो म्यूजिक चल रहा है ना वो उधर का म्यूजिक जो उनका है, विद्याधर गंधर्व किन्नर यक्ष किम पुरुष और आप विद्याधर बोलते जाओ आप, क्या और क्या च उनका है चारण विद्याधर आणि सगळे लोक तिथे उभे असतात, ते प्रयत्न करतात की ह्यांच्या वाद्यवृंदाला आपण साथ देऊ, ह्यांना असिस्ट करू, पण ह्यांचा सूर आणि त्यांचा सूर कधीही मिळत नाही, ते आपला वाजवत हे आपला वाजवतात। और इनके पास में कौन सा वाद्य है बताओ, एक है कंगन, एक है पायल और एक है मुरली, ये प्रधान वहाँ पर प्रधान वहाँ वाद्य है। शुरुआत कहते हैं पैंजन से होती है, फिर इससे होती है हाथ से, फिर मुरली बजती है, या कभी मुरली पहले बजती है फिर पैंजन और कंगन बजते हैं। और वो जो सिम्फनी है, वो जो ऑर्केस्ट्रा है, वो कोई भी देवता जो एक्सपर्ट है, जन्म से ही वो म्यूजिशियन है, वो लोक में जन्म लिया तो आप जन्म से ही वाद्य बजाने वाले हैं, गंधर्व में भी करेंगे तो गाने वाले, जन्म से ही गाने वाले, बेस्ट, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। और कहाँ जाएंगे, किन्नर के पास जाएंगे, डांस में एक्सपर्ट है बचपन से, ऑल गोल्ड मेडलिस्ट, वो सारे लोगों के बेस्ट बेस्ट लोग जो हैं वो यहाँ की एक भी सुर और ताल को पकड़ नहीं सकते हैं। और अपनी कोशिश में कुछ ना कुछ बजाते रहते हैं खुद के समाधान के लिए, लेकिन मैच कभी होता नहीं। तो ऐसा रास मंडल जो है उसके बाहर उनको बिठाया और बताया आप यहाँ बैठो और दर्शन करो और रक्षा भी करो कि अयोग्य व्यक्ति प्रवेश न करे। आज भी वहाँ पर रास मंडल के बाहर हमारे शंकर महाराज बैठे हुए हैं, हर शाम को उनका गोपी श्रृंगार करते हैं और उनको प्रवेश भी है, प्रवेश भी मिलता है। लेकिन भाव क्या है, सेवा भाव है, एंजॉय करने का भाव नहीं है। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको कि रास पूर्णिमा की महानता क्या है। शिव जी को भी इतना प्रयास करना पड़ता है अंदर जाने के लिए, हम लोग कौन है उसके पीछे। महालक्ष्मी आई, बड़ा लंबा प्रसंग है वो, मुरली की आवाज जो है ना भगवान की यहां से निकली है ना, पूरे ब्रह्मांड के कवरिंग को पार करते हुए करते 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 वो गर्भोदक शाही विष्णु के पास गई, वो भी ऐसा डोल रहे हैं आवाज सुनकर, सारे देवता ब्रह्मा आदि देवता अपने अपने लोकों में डोल रहे हैं, सारे गंधर्व किन्नर जितने भी लोक हैं, वरुण देवता चंद्र देवता सब लोग ऐसे, दे आर स्विंगिंग स्वेइंग इन द एक्सटेसी। फिर वो ब्रह्मांड पार करके गर्भोदक शाही विष्णु सुन रहे हैं वो भी उसको, फिर वो ब्रह्मांड का कवच पार करके वो भौतिक दुनिया के जो महतत्व का अंधकार है वहाँ घुसती है, फिर वो कारण उदक शाही भगवान को जगा देती है, वो तो योग निद्रा में सोए हुए हैं, वो मुरली की आवाज़ सुनकर वो जग जाते हैं और डोलने लगते हैं, वहाँ से वो महतत्व को पार करके विरजा को पार कर देती है, विरजा नदी को पार करके आवाज़ ब्रह्म ज्योति में घुसती है। और ब्रह्म ज्योति में क्या है, अनंत वैकुंठ प्लैनेट्स हैं, उसमें हर एक में अलग अलग विष्णु नियंत्रण करते हैं, वो सारे विष्णु ऐसे अति आनंद में डोल रहे हैं। फिर वो अयोध्या द्वारका और मथुरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वहाँ के लोगों को भ्रमित कर देती है और फिर वो गोलोक पहुँच जाती है। सुनो आप पहुँचो, तो जब वैकुंठ पहुँचती है ना तो वहाँ की जो लक्ष्मी है, एक लक्ष्मी जो है वो मोहित हो जाती है। तो भगवान के चरण कमल छोड़कर जिसकी सेवा कर रही है वो, हाँ पाद सेवन उसका प्रमुख, उसके आचार्य है ना वो पाद सेवन की, क्योंकि फिर भी भगवान के चरण कमल उनकी चिरंतन सेवा छोड़कर नीचे आ जाती है, जहाँ पर भगवान रास करने जा रहे हैं उस ब्रह्मांड में पहुँच जाती है, तो उसको रोक लेते हैं सब सखियाँ, कहते माता जी आप कहाँ जा रही है, रास में जा रही हूँ, कौन है आप? जानते नहीं, मैं महालक्ष्मी हूँ। नहीं, आपको शंकर जी को क्या बोला था कि यहाँ पर एक ही पुरुष है, आपको स्त्री बनना पड़ेगा। ये तो स्त्री ही आ रही है, फिर भी रोक लिया उनको, क्योंकि वो एक ही क्वालिफिकेशन नहीं है, बहुत सारे अदर क्वालिफिकेशन है। वो कह रहे आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। बोलो क्या समझते हो, क्या क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, क्या मतलब है आपका? वो कहते पहले आपको गायों का दूध निकालना पड़ेगा, फिर वो दूध का दही जमाना पड़ेगा, फिर उसका मंथन करना पड़ेगा, मक्खन पैदा करना पड़ेगा, उसको मटके में रखना पड़ेगा, फिर गौशाला साफ करनी पड़ेगी, गोबर इकट्ठा करना पड़ेगा, गोमूत्र इकट्ठा करना पड़ेगा, वो गोमूत्र गोबर को इकट्ठा करके कंडे बनाने पड़ेंगे, उसको सुखाने पड़ेंगे पर्वत के ऊपर, पेड़ के ऊपर, शाम को इकट्ठा करने पड़ेंगे, कटोरी में सर पे रख के जमा करने पड़ेंगे, फिर वो एक गोबर के कंडों का एक घर होता है, पता है आपको, गाँव में बहुत सुंदर उसका डेकोरेशन बना के घर बनाते हैं, उसके अंदर जमा करने पड़ेंगे, वो चलाकर आपको रोटी और हाथ की रोटी और सब बनाना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा, ये सब काम करना पड़ेगा आपको। हे, मैं नहीं कर सकती ये सब काम, तो महालक्ष्मी हूँ, आप जानते नहीं मेरा पोजीशन क्या है। अरे माता जी, आई एम वेरी सॉरी, ये किए बिना आपको प्रवेश नहीं दे सकते हम लोग। और कैसा होता है ना, जगह जगह का एक इम्पोर्टेंस होता है, आप होंगी महारानी अपने महल में, लेकिन यहाँ पर दूसरे जगह पर आई हो, यहाँ पर कंट्रोल किसी और का है ना। हर एक जगह पे आप लोगों का अपना अपना पोजीशन होता है। जैसे कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हर गली में हर कुत्ता शेर होता है, लेकिन अपने गली में, बाहर वाले गली में फिर उसको पूछ अंदर वाले के भागना पड़ता है, तो वहाँ और एक शेर बैठा हुआ है कुत्ता नाम का। तो इस तरह से इस जगह पर गोपियों का साम्राज्य है और पूरी पावर है उनके पास। महालक्ष्मी अपना महालक्ष्मी का कार्ड दिखा के भी अंदर घुस नहीं सकी, सोचो आप। तो महालक्ष्मी बोली, मैं तो सब ये कुछ कर नहीं सकती, मैं तप करूंगी और तप करके योग्य बन जाऊंगी। अरे आज तक तप कर रही है, उधर ही खड़ी है, उधर बेल वन में उधर ही उनकी मूर्ति खड़ी है तप करते हुए, प्रवेश नहीं मिल रहा है उनको। अभी इसका मतलब ये मत समझना कि महालक्ष्मी में योग्यता ही नहीं है। महालक्ष्मी लीला करके हमको दिखा रही है, महादेव जी लीला करके हमको समझा रहे हैं, आप महादेव भी होंगे ना तो भी आपको गोपी बनकर आना पड़ेगा, और महालक्ष्मी भी आप होंगे तो भी आपको वो गोपी का भाव जो है वो ग्रहण किए बिना ऐश्वर्य भाव से रास में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं महालक्ष्मी हूँ और मेरा ये पोजीशन है, हम सोचते हैं मैं डॉक्टर हूँ, आप बोलते हैं मैं पुरुष हूँ, आप बोलते हैं मैं करोड़पति हूँ, आप बोलते हैं मैं इतनी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, मैं इतना विद्या संपन्न हूँ और मैं इतना भक्त हूँ और रोज 108 माला जप करता हूँ, आपके पास बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगी बताने के लिए, लेकिन कोई वैल्यू नहीं उसका जब तक वो सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम भज, और सब कुछ समर्पित करके जो गोपियों ने किया भगवान के लिए, जो भगवान भी उसके ऋणी है। भगवान क्या बोलते हैं, न पा रहा ये हम गोपियों के, बोलते हैं कि आपने मुझे इतना प्रेम दिया है, मैं हूँ भगवान, कोई वाद नहीं उसके अंदर, कोई शंका नहीं है, कोई डिबेट नहीं उसके ऊपर, मैं सर्व संपन्न हूँ, सब कुछ देने वाला हूँ, सबको नियंता हूँ, सब निर्माण करता हूँ, लेकिन मैं आपने किए हुए प्रेम का बदला नहीं चुका सकता। मेरे पास भगवान होने पर भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपके द्वारा दिए हुए प्रेम पूर्ण सेवा का और प्रेम का मैं इक्वल कुछ दे सकूं, इसलिए आप जो मुझ पर प्रेम करते हैं उसी में संतुष्ट रहो, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो असहाय हो जाता हूं। ये गोपी भाव है जो भगवान को भी उनका भाव असहाय बना देता है, इमोशनली असहाय हो जाते हो, इमोशनली क्या कहते हैं उसको, टोटली हेल्पलेस। वो महालक्ष्मी इस लीला में दिखा रही है कि भले महालक्ष्मी हूं लेकिन जब तक ये भाव मेरे अंदर नहीं आता है रास में प्रवेश नहीं है। अब ये अगर जब हम सुन रहे हैं और बाकी लोग बोलते हैं कि ये तो भगवान की इमोरल एक्टिविटी है, अनीतिपूर्ण एक्टिविटी है, क्या मूर्खता है सब ये, केवल अज्ञान के वजह से लोग ऐसा सोचते हैं। इसलिए कहा गया है कि भगवान के लीलाओं के विषय में केवल प्रामाणिक भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए, किसी ही प्रोफेशनल व्यावसायिक कथाकार से नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि व्यावसायिक कथाकार अपने व्यवसाय के भाव से इसको करते हैं, वही व्यवसाय भाव आपके अंदर प्रस्तावित हो सकता है। और जो भक्ति भाव से भगवान के लिए कथा करता है उसके अंदर भक्ति भाव प्रस्तावित हो सकता है। कहने वाला जो व्यक्ति है उसका जो पैकेज है ना, वो पैकेज ही आपको मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये दो कथा मैंने आपको इसलिए बताई कि ये रास लीला कितनी महान लीला है, और आचार्य हमारे बताते हैं कि अगर रासलीला के बारे में सुनना ही है तो भगवान के लीला के विषय में क्या कहते हैं उसको, ऑ एंड रेवरेंस, क्या कहते हैं हिंदी में, मराठी में क्या कहते हैं,
आदर भाव, आदर भाव
से सुनना चाहिए कि मैं इसको देखने के सुनने के लायक नहीं हूं लेकिन मुझे सुनने को मिल रहा है, मैं सुन रहा हूं, थैंक यू वेरी मच, कोने में बैठा हो लेकिन सुना हूं। ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर हूं, मेरे को कुर्सी नहीं दिया आपने, जमीन पर आसन भी नहीं दिया, ऐसे ही बोला बैठ जाओ किधर भी, मैंने सुनूंगा कथा, ऐसा नहीं, कथा सुनना है मुझे, किधर जगह खड़े रंग मिले तो भी चलेगा, कोने में कहीं कोई देख रहा नहीं है, पूछ नहीं रहा है, चलेगा, आई वॉन्ट टू स्टैंड एंड लिसन, उसी को वो भाव की प्राप्ति होती है। और ऐसे भाव से जो बोलने वाला होता है उसी के कहने से रुगे के हृदय पर परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है, नहीं तो केवल इन्फॉर्मेशन मिलती है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। हमको क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन तो बहुत है दुनिया में, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है, हमारे जीवन में तब फर्क पड़ेगा जब हमारा हृदय परिवर्तन होगा, भगवान के लिए अनुकूल परिवर्तन जब होगा तब हमारा कार्य पूरा हो जाएगा, नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है पूरा। सब नॉलेज इकट्ठा किया तो वो नॉलेज हमको डुबाने के लिए बहुत सहायता करेगा जल्दी, यू विल बी ड्राउनिंग फास्टर विद द वेट ऑफ नॉलेज विच यू हैव क्रिएटेड इफ दैट इन्फॉर्मेशन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसी है रासलीला भगवान ने की। उसमें भी देखिए भगवान ने जैसे ही गोपियों ने थोड़ा सा गर्व किया ना, गायब हो गए वो। सो वॉट, आप गोपी हो तो क्या हुआ, भगवान के सामने कभी भी गर्व नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। भगवान मेरे हैं इस बात पर भी गर्व नहीं होना चाहिए। गोपियों को क्या गर्व हुआ था, ये नहीं था कि मैं सुंदर हूं, मैं ऐसी हूं, नहीं, भगवान मेरे साथ डांस कर रहे हैं, मैं बहुत स्पेशल हूं, भगवान सबको छोड़ पर मेरे साथ, मुझे भगवान के लिए ही गर्व था उनको। लेकिन वो भी एक स्वार्थी गर्व है ना, फिर भी कि मैं इतनी स्पेशल हूं कि भगवान सबको छोड़कर मेरे साथ डांस कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली सबके साथ में मन में एक ही विचार आया, एक साथ विचार आया, क्योंकि सबके साथ में अलग रूप में भगवान डांस कर रहे हैं और इतने भाव से नाच रही है गोपियां कि उनको पता भी नहीं कि नेक्स्ट के साथ भी मैं वो नाच कर रहे हैं। ऐसा नहीं, उनको ये पता नहीं कि जो नेक्स्ट गोपी है उसके साथ में अलग कृष्ण नाच कर रहे हैं और मेरे साथ भी अलग कृष्ण नाच कर रहे हैं। वो इतनी भाव में मशगूल थी कि उनको पता ही नहीं कि बाजू में क्या हो रहा है। तो आचार्य बताते हैं कि सेवा भगवान की ऐसे करनी चाहिए, मग्न होकर, वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, वो अच्छा कर रहा है मुझसे कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, वो मुझसे अच्छा नहीं करना चाहिए, मुझे उससे अच्छा करना चाहिए, कोई नहीं, मग्नता। हमारे गुरुदेव को एक बार पूछा गया कि कृष्ण भावना का एक शब्द में व्याख्या करना है तो क्या करेंगे आप, तो उन्होंने कहा एब्सॉर्प्शन, मग्नता, कृष्ण में मग्नता, यही भक्ति का एक शब्द में किया हुआ व्याख्या है। और मूर्तियां, गोपियां उसका मूर्तिमान स्वरूप थी, हर समय मग्नता, चाहे दूध निकाल रही है गाय का, चाहे मंथन कर रही है, चाहे गर्म कर रही है, चाहे बर्फी बना रही है, चाहे कंडे बना रही है, सब में कृष्ण का ध्यान और मग्नता थी उनकी। तो मैं क्या कह रहा था, तो चले गए भगवान, मतलब शरणागति जो है ना भगवान के विषय में वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, उसके बीच में अगर गर्व की बाधा आ गई तो कट, दर्शन बंद, भगवान लुप्त हो गए। फिर वही गोपियां जब आई, पता चला और कि भगवान चले गए, तो तभी उनको ध्यान में आया कि बाजू में भी गोपी है, तो उनको बोला पता है मेरे साथ नाच कर रहे थे वो, तो बोल रहे पता है मेरे साथ भी नाच कर रहे थे वो, और सबको पूछने लगे, सबने बताया कि मेरे साथ भी नाच कर रहे थे वो, तब पता चला कि सबके साथ में थे वो, तो मैंने क्यों गर्व किया, और सब लोग अपने आप को कोस रही है कि हम कितनी मूर्ख है, हमारे सबके साथ थे वो लेकिन हमने बेकार में गर्व किया, खो गया उनको, खो दिया उनको। फिर वो गीत गा रही है, वेणु गीत, गोपी गीत, पुकारते जा रही है वन्य देवताओं को, ग्राम्य देवताओं को पुकार रही है। फिर भगवान का दर्शन देते हैं उनको, बोलला कह के आज की कथा हम समाप्त करते हैं। अभी तो रास का आरंभ नहीं हुआ है, अभी तो केवल भगवान ने उनको अपना संग दिया है, मतलब भगवान किसी को हवा दे रहे हैं, किसी के चरण दबा रहे हैं, किसी को पानी लेकर पिला रहे हैं जमुना जी का, किसी का वस्त्र संवार रहे हैं, किसी का कुछ मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। अभी तक रास नृत्य शुरू नहीं किया है, अभी केवल प्राथमिक मिलन शुरू हुआ है उनका, बैठे हैं मतलब बात कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं वातावरण का, उसने में गर्व हो गया। नृत्य तो बाद में की बात है, तो अंतर्धान हो गए, तो फिर वो ढूंढ रहे हैं, फिर भगवान जाकर, भगवान को भी ऐसा नहीं कि आनंद हुआ था उनको छोड़कर, वो भी दुखी दुखी थे उनको छोड़कर, लेकिन उनको और विश्व को उनको एक अच्छा सबक सिखाना था, अच्छा उपदेश करना था। तो जाकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए भगवान, वो पेड़ आज भी वृंदावन में है, जमुना किनारे है, उसको कहते हैं इमली तला। वो इमली का पेड़ के नीचे भगवान जाके बैठ गए और भगवान को भी बहुत विरह हुआ राधा रानी का। तो भगवान उधर बैठकर मुख से राधे राधे और हृदय के आंगन में भगवान राधा रानी के दो चरणों पर ध्यान करते बैठे हुए हैं। कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो, हाँ, राधा रानी के दो चरणों पर ध्यान कर रहे हैं और मुख से राधे राधे का नाम ले रहे हैं। और ये लोग गीत गाते गाते आ रहे हैं और भगवान अपने ध्यान में मग्न हो गए। इतना ध्यान गहरा था उनका कि उनका सांवला रंग जो है वो स्वर्ण रंग हो गया, गौरांग हो गया, वो उनको पता नहीं अपने ध्यान में मग्न है। तो अभी क्या दृश्य दिख रहा है, चांदनी रात में चांद्र के प्रकाश में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, दिखता कृष्ण जैसा है, मोर मुकुट पहना हुआ है, पीताम्बर भी पहना हुआ है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ है, लेकिन रंग गोरा है और आंखें बंद है। सब लोग चर्चा कर रहे हैं कौन है कौन है कौन है ये कौन है, लगता तो कृष्ण जैसा ही लेकिन रंग कैसा गोरा है, मतलब कौन है ये कौन है कौन है, करते 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 डिस्कशन बहुत हो गया। तुमने कहा राधा रानी आप ही जाकर उनको पूछो कि कौन हो आप। तो राधा रानी गई है और उन्होंने कृष्ण को स्पर्श किया है, तो स्पर्श करते ही कृष्ण बाह्य चेतना में आ गए, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, और धीरे धीरे उनका जो गौर वर्ण था वो उतर गया और वहाँ पर सावला रंग आ गया और पूरा सावले रंग हो गए, आंखें खोली उन्होंने तो समझ गया ये कृष्ण ही है। तो राधा रानी ने पूछा कि ये क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि जब आपको छोड़कर मैं यहाँ आकर बैठा और आपके ध्यान में मैंने आपका चिंतन किया, आपका नाम उच्चारण किया, तो मेरी ऐसी अवस्था हो गई, मैंने इतने अप्रतिम आनंद का अनुभव किया, क्यों आपने मुझे बीच में आके रोका, आपके आने से आनंद में भंग हो गया मेरा, वो लीला समाप्त हो गई पूरी, जिस प्रेम का मैं आस्वादन कर रहा था, अद्भुत प्रेम जो मैं स्वयं प्रेम का देने वाला और लेने वाला, आपके आपसे प्रेम का अनुभव करने वाला हूं मैं, लेकिन इस बार जब मैंने आपका भाव लेकर आपके विषय में चिंतन किया तो जिस प्रेम का मुझे अनुभव हुआ वो मुझे आज तक कभी हुआ नहीं था, मतलब मेरे लिए भी प्रेम की मूर्ति होने पर भी ये प्रेम अद्भुत अनुभव था जो पहले कभी भी नहीं था, क्योंकि प्रेम में भी कई प्रकार होते ना, तो ये प्रेम का अनुभव कभी हुआ नहीं था मुझे, और आपने मुझे अभी उसको इंटरप्ट कर दिया, बीच में उसका व्यवधान डाल दिया, तो मैं अभी और ज़्यादा व्याकुल हो गया है ना। आपको अभी बहुत भूख लग रही है, आपको जलेबी अच्छी लगती है बहुत, और आपका जलेबी का ताट आपके सामने आया, आपने एक खाया और कोई छीन के लेके गया पूरा ताट, तो आपको पहले आप शांत थे कि भाई सब मेरा ही है, खाऊंगा आराम से बैठ के, अभी एक ही मिला तो आप तड़पना आराम हो जाएगा, कहाँ जा रहे हो, कहाँ लेके गए हो, किसके पास है, कौन लेके गया, कौन से माले पे है, भागेंगे उसके पीछे आप। थोड़ा सा आश्वासन किया ना उन्होंने तो तड़प निर्माण हो गई, उस तड़प में उन्होंने ऐलान किया अभी इस आनंद को पूरा अनुभव करने के लिए मैं एक पूरा अवतार खर्च करूंगा, वो चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण के अंदर राधा रानी प्रवेश कर चुकी है भाव से और हर प्रकार से, और तब जो कृष्ण को अनुभव होता है वो चैतन्य महाप्रभु रूप में प्रकट हो जाता है। जो प्रेम कृष्ण को भी व्याकुल कर देता है ऐसा प्रेम राधा रानी का है, असहाय बना देता है कृष्ण को, शक्तिहीन बना देता है, तेजहीन बना देता है, ऐसा मतलब अपन क्या म्हणतो ना गर्भगणित, सक्षम व्यक्ति को वो गर्भगणित कर सकता है, कृष्ण सबसे सक्षम व्यक्ति है। राधा रानी के प्रेम के सामने वो कुछ भी नहीं है, अपने आप को कुछ भी नहीं समझते, व्याकुल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, बरसाने में आके डोलते हैं, हम वो क्या कहते हैं, अरे बाबड़ो है गो, बावड़ो मतलब क्या, बावरा झाला म्हणजे तो वेडा झाला पूर्ण, वेडा म्हणजे कसा, अभी उसको कुछ भान ही नहीं है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे जा रहा है, चल रहा है, कुछ अच्छा आदमी था वो पहले, अब पता नहीं क्या हो गया उसको, इज हॉन्टेड, उस तरह से कृष्ण की अवस्था होती है, पागलों की तरह आके बरसाने में डोलते रहते वो, और वो बोलते हैं अरे नंद को लाला बावड़ो है गो, उस प्रेम में उतनी शक्ति है। तो ये भी रासलीला के दिन ही हुआ है लीला, भगवान का गौर वर्ण में रूपांतर होना, ये संवाद सब उसी दिन हुआ है, उसके बाद में रासलीला आरंभ हुई है। और फिर ब्रह्मा जी की एक रात मतलब 432 कोटि साल, मैंने गणित करके रखा है, 432 करोड़ ईयर्स, एक 12 घंटे में रात में भगवान ने समेट लिया और गोपियों को 432 कोटि साल तक नाचने का अनुभव दिया। और फिर जब सुबह हुई तो सब गोपियां अपने अपने घर चली गई, तो जब रात को लोगों ने रोका था जो भी कुछ हुआ था, जब गोपियां लौट के आई घर पे तो सब लोग सब कुछ भूल गए थे भगवान की योग माया के प्रभाव से। वो कहीं गई थी आ गई वापस, किसी को याद नहीं रहा कि रात को हमने उनको रोका था फिर भी वो भाग गई थी, कल आके देखा था जाने दो वापस उसको, ऐसा कुछ नहीं। भगवान सब कुछ अपना क्षेम कुशल संभाल लेते हैं। जब हम रिस्क लेकर उनकी सेवा में अपने आप को लगा देते हैं, रिस्क लेना मतलब क्या, बहुत बड़ी रिस्क लेते हैं, बहुत सारी जिंदगी में रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन वो अपने लिए लेते हैं हम लोग। लेकिन भगवान के लिए जब हम रिस्क लेते हैं और सेवा करते हैं तो आपने जो भी कुछ किया है उसका सारा क्षेम कुशल भगवान, वट एवर यू लैक कृष्णा मैनेजेस, वट एवर यू हैव कृष्णा प्रिजर्व्स, जो अपने पास है उसको भगवान मेंटेन रखते हैं, जो आपके पास त्रुटि है वो उसको ठीक कर देते हैं, जो नुकसान तथाकथित नुकसान होने वाला था या हो सकता है उसको भी भगवान खत्म कर देते हैं, आपका सर्वांगीण कल्याण करते हैं भगवान। इसलिए भगवान की सेवा में कभी भी अपने को क्या कहते हैं उसको, कतराना नहीं चाहिए। क्या मतलब मराठी में, संकोच नहीं करता कामों कभी, देवाच्या सेवेमध्ये कधीही संकोच करता कामा नये, असं करू का मग काय होईल, तसं करू का तर काय होईल, बिना संकोच और बिना डर के हमको भगवान की सेवा में कूद जाना चाहिए, तब भगवान अपने हो जाते हैं। जब कैलकुलेटेड रिस्क लेके अगर काम करते हैं तो भगवान जानते हैं कि बड़ा व्यवहारी आदमी है, बहुत गणित करके काम कर रहे हैं, तो मैं भी गणित ही उसको रिस्पॉन्स दूंगा, है ना। आप गणित कर रहे तो मैं भी गणित करूंगा, आप गणित कर रहे हैं तो मैं भी गणित करूंगा, आप गणित के परे जाएंगे मैं भी गणित के परे जाऊंगा, आप निस्वार्थ निरपेक्ष प्रेम करेंगे मैं भी निस्वार्थ निरपेक्ष प्रेम करूंगा, आप अनंत प्रेम करेंगे मैं भी अनंत प्रेम करूंगा। लेकिन हमारा अनंत उनका अनंत में फर्क है ना, हमारा जो अनंत है वो लिमिटेड है, हमारा अनंत है फिर अनंत लिमिटेड है, उनका अनंत लिमिटेड नहीं है, उनका अनंत अनंत है, उनका अनंतोत्तम अनंत है वो। इसलिए भगवान के दिशा में जब हम एक कदम उठाते हैं तो भगवान भी अपनी दिशा में एक कदम उठाते हैं, लेकिन उनका कदम में हमारे कदम में बहुत अंतर है। इतना समझ में आया ना, तो हमारा पूरा भक्ति सफल है। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच, हरि बोल। तो बात शुरू हुई थी कोल्हापुर की लक्ष्मी से, तो कोल्हापुर की महालक्ष्मी को वंदन करते हुए हमारी वाणी को हम विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रसन्न गए बरसाना धाम की जय।